ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम। तो आज के इस फाल्गुन महीने के शुद्ध द्वादशी के दिन 20 जनवरी को आप सबका साहिल कोसला के घर में स्वागत है। हरे कृष्णा। तो हमारा आज का विषय जो है वो वैष्णव सदाचार है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन अभी आने वाला है 3 दिन में, बुधवार के दिन। तो उन्होंने कहा था एक बार कि भक्त लोग जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने व्याख्या किया, लोगों ने उनको पूछा कि वैष्णव कौन है। तो महाप्रभु जी ने कहा कि जो भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। फिर अगले साल उनको पूछा गया कि वैष्णव कौन है, तो उन्होंने कहा कि जो निरंतर भगवान के नाम को जपते रहता है, सततम कीर्तयन्तो माम, वो वैष्णव है। फिर तीसरे साल उनको पूछा गया कि वैष्णव कौन है, तो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर दिया उसका, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वह वैष्णव वो है जिनके संघ में आते ही संघ में आने वाले व्यक्ति को भगवान के नाम लेने की प्रेरणा होती है। वेन एवर यू कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, इमीजिएटली द पर्सन इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन फील्स लाइक चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। फिर उन्होंने हरिदास ठाकुर के साथ जो संबंध किया, जो संवाद किया, उसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि भक्त जो है कई प्रकार के होते हैं। एक भक्त ऐसे होते हैं एक प्रकार के जो वैष्णव साधना में बहुत उत्कृष्ट रहते हैं वो, लेकिन सदाचार में वो ज़रा कम पड़ते हैं। उनका सिद्धांत जो समझदारी है उनका है, सिद्धांत क्या है वो अच्छी तरह समझते हैं उसको, नाम साधना भी अच्छी करते हैं, लेकिन सदाचार में वो कम पड़ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं सदाचार में एकदम श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन साधना में सिद्धांत में वो कमजोर रहते हैं। लेकिन हे हरिदास ठाकुर, आप ऐसे भक्त हो जो आप न केवल सदाचार में श्रेष्ठ हो लेकिन सिद्धांत और नाम साधना में भी श्रेष्ठ हो, इसलिए आप स्वयं पूरे गौड़ीय संप्रदाय के अलंकार हो। स्वयं मतलब गौड़ीय संप्रदाय के गले का हार हो आप। यू आर द ऑर्नामेंट ऑफ द होल वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव कांग्रेगेशन। तो इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल साधना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, साधना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में सिद्धांत का ज्ञान और वैष्णव सदाचार बहुत ज़रूरी है। और सिद्धांत और साधना आपके अंदर कितनी गहराई तक पहुंच गई है इसका प्रमाण आपका सदाचार है। ऐसे हमने बहुत हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस के पहले दिनों में सुना था कि एक अभक्त भी आकर भगवत गीता और भागवत पर जोरदार प्रवचन दे सकता है, एकदम जोरदार, आपको दंग रह जाएंगे आप, लेकिन वो प्योरली अभक्त हो सकता है, नास्तिक हो सकता है। तो कोई अच्छा प्रवचन करना, ऐसे कितने लोग भगवत गीता में PhD हैं विदेशी, जो भगवान पर विश्वास ही नहीं करते लेकिन भगवत गीता में PhD हैं। तो ये सब बुद्धि के सर की बुद्धि की कसरत है, इस इज इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स, यू कैन डू PhD इन एनीथिंग, बट श्रद्धा होना और भक्त होना ये दूसरी बात है। आप भक्ति के विद्या में, वैष्णव विद्या में पंडित हो सकते हो, विद्वान हो सकते हो, भक्ति वेदांत हो सकते हो, फिर भी आप अभक्त हो सकते हो, इट्स पॉसिबल। जैसे कर्म कांड, ज्ञान कांड, सिद्धि कांड, ये बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। ज्ञानी होना भी बहुत आकर्षक वस्तु है, लेकिन भक्ति ये तीनों के परे है। भक्ति को कर्मकांड, ज्ञान से और सिद्धि से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए साफ साफ रूप में समझना जरूरी है कि आपने कितनी भक्ति हृदय से की है, और लोकल भाषा में कहा जाओ कितनी भक्ति को आपने डाइजेस्ट किया है सही रूप में, वो आपके व्यवहार से पता चलता है। आपका व्यवहार ये एक साफ सुथरा प्रमाण है कि आपकी भक्ति किस हद तक पहुंची हुई है। सिद्धांत से आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि सिद्धांत से आप अच्छे भक्त हो कि नहीं हो, लेकिन सदाचार ये ऐसा एक ही प्रमाण है जिससे आप कितनी गहराई में भक्त बने हो, हृदय से कितने भक्त बने हो, कितने प्रामाणिक, कितने सच्चे भक्त हो, इसका प्रमाण केवल सदाचार है। और वो सदाचार भक्तों के बीच में होना एक सदाचार की बात है कि तब हम लोग एक तरीके से बिहेव करते हैं, और जैसे ही भक्तों के बाहर चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, नौकरी में चले जाते हैं, या तो किसी मैरिज में चले जाते हैं, या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, या तो मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं, तो आप पर तो कोई भक्तों का समुदाय नहीं है आपके आजू बाजू में, आप पर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको भी वैष्णव सदाचार से रहना है। तब कैसा बिहेव करते हो आप, वो आपके भक्ति का प्रमाण है। ऐसे कहा गया है कि जब आप अकेले में रहते हो, एकदम अकेले में जंगल में रहते हो, कोई भी नहीं आपके साथ, ना भक्त है ना अभक्त है, आप अकेले में हो, तब अकेले में जब आप होते हो तो आपके मन में क्या विचार आते हैं, ये आपके भक्ति का प्रमाण है। देयर इज नोबडी टू वॉच यू, कोई भी आपको देखेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो, उस समय आपके मन में क्या विचार आते हैं, ये आपके साधना और सिद्धांत का परीक्षा है। ये बहुत जरूरी है समझना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये भी सुना था बहुत पहले दिनों में कि जो आप किसी भक्ति वाले समुदाय में जाते हो, फॉर एग्जांपल पुष्टि मार्गी समुदाय है, सत्संग चल रहा है उनका, या तो कई क्रिश्चियनों का कहीं गेट टुगेदर है, या और कोई धार्मिक कोई सभा है, या और कोई निम्बार्कियों का सम्मेलन है, या कहीं भी जाते हो आप, या इस्कॉन के मंदिर में जाते हो, तो बाहर का व्यक्ति जब आता है ना ऐसे धार्मिक गैदरिंग में, तो वो केवल एक चीज़ देखते रहता है कि इन लोगों का व्यवहार कैसे है। वो नया आदमी हो, देख वो तो पहली बार देख रहे हैं, चलो भाई आर्ट ऑफ लिविंग में अभी मैं जा रहा हूँ, या कोई बोलेगा कि वो सिद्ध योग का जो शिविर है उसमें जा रहा हूँ, या और कोई ऐसे होता ना, बहुत सारे आजकल चल रहे हैं, सहज योग का, निर्मला देवी का चल रहा है। जब बाहर से कोई पहली बार पहुंचता है उसके अंदर, तो वो उस संप्रदाय को या आंदोलन को केवल एक ही रूप में जज करता है, वो ये है कि इनका व्यवहार कैसे है, और उसमें भी उस व्यवहार के अंदर भी एक चीज को बहुत गहराई से देखते रहता है। कोई बता सकता है मुझे, कोई बता सकता है? हाँ, मॉरल बिहेवियर। और बताइए गहराई में जाकर, वही आपस में तो पहले बता दिया मैंने, उनका व्यवहार कैसा है, वो एक जनरल आचार की बात होगी ना, लेकिन आचार में भी एक चीज को वो दूरबीन से देखते रहते हैं। आप सबका उत्तर सही है, यस, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को देखते रहते हो कि इनका आप एक दूसरे के साथ में कैसा, उनका आवागमन कैसा है, मिलना जुलना कैसा है, गले लगा रहे हैं क्या बहुत प्रेम से, ह्यूमिलिटी देखते हैं, लेकिन एक चीज़ देखते हैं कि पुरुष लोग स्त्री वर्ग से कैसा व्यवहार करते हैं, एकदम ऐसा देखते हैं लेंस में से, और वो टेस्ट में अगर वो संप्रदाय पास हो गया तो उसकी एंट्री शुरू होती है उसके अंदर। फिर इफ़ी अगर वो देखता है कि इस संप्रदाय के या समुदाय के भक्ति मार्ग के या जो भी मार्ग है उसमें से स्त्री पुरुष का व्यवहार एक तरह का है, तो वो अपना मत बना लेते कि ठीक है भैया मुझे जाना नहीं उसके अंदर। लेकिन अगर स्त्री और पुरुषों के बीच में उनके जो उनके तरफ से भक्त बने हुए, जब वो मानते हैं कि हमारे भक्त हैं या हमारे संस्था के सदस्य हैं, उन लोगों के स्त्रियों में, उन लोगों के पुरुषों में जो संबंध होता है, बातचीत कैसे तरीका है, उस पर वो संप्रदाय को वो मार्क दे देते हैं, 8 पॉइंट्स, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। और वो जब वो आदर्श होता है तो बाहर के व्यक्ति को अंदर आने के लिए अच्छी प्रेरणा मिलती है, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी वैष्णव सदाचार्य तो बड़ी किताब है हमारे मंदिर में, इट्स अ बिग सब्जेक्ट मैटर, बट ग्रॉसली देखा जाएगा स्थूल मात्रा में तो उसमें कई प्रकार के लोगों से कैसे व्यवहार करना है उसका एक गाइडलाइन है। फॉर एग्जाम्पल स्त्रियों से कैसे व्यवहार करना है, और वरिष्ठ लोगों से कैसे व्यवहार करना है, जूनियर्स से कैसे व्यवहार करना है, हमारे साथ वाले जो है उनसे कैसे व्यवहार करना है, और जो भक्त नहीं है, जो परिवार के सदस्य हैं, जो इन लॉज हैं या हमारे घर के भाई बहन हैं, जो अभी अपनी संप्रदाय में भक्त नहीं बने हुए हैं, उनसे कैसे व्यवहार करना है, जहाँ पर आप नौकरी करते हो या काम करते हो वहाँ से वहाँ पर कैसे व्यवहार करना है, आम जनता में जब घूमते हो, समुद्र में घूम रहे हो या बस में यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो उधर कैसे व्यवहार करना है, या अलग अलग प्रकार के व्यवहार हैं। यू वांट मी टू गो इन डिटेल्स ऑफ दैट, बहुत लंबा विषय है। मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा फ्यू मिनट्स बोलूँगा, उसके बाद आप प्रश्न पूछिए, फिर वो उसमें कवर हो जाएगा। और खास करके सन्यासियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, सन्यासी के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी से कैसा व्यवहार करना है, पति से कैसे व्यवहार करना है, बच्चों को कैसे परवरिश करनी है उनकी भक्ति में, कैसा कल्चर घर पे रखना है, किस प्रकार का, वो सारी चीज़ें ये वैष्णव सदाचार में आती हैं। और जब तक हम लोग उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक हम लोग एक्चुअली प्रगति नहीं कर सकते हैं। लिंक टूट जाता है, आई फॉरगॉट व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। एनीवेज, तो आप लोग मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, जो टॉपिक मैंने छेड़े ना अभी, ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, पति पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग, सीनियर डिवोटीज, बाहर वाले लोग, ऑफिस के लोग, घर के लोग, रिश्तेदारी के लोग, शादी में कैसे व्यवहार करना है, किसी की शादी में गए तो, किसी के घर में मेहमान बनकर गए तो कैसे रहना है, किसी के घर में मेहमान आए तो कैसे व्यवहार करना है, कोई भक्त मेहमान आए तो कैसे करना है, रिलेटिव्स आए तो कैसे व्यवहार करना है, ये सारी अलग अलग बातें हैं। ये तो आम बातें हैं, हमको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब भक्त बन जाते हैं या भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कि अभी एक अभी मैंने टोपी बदल ली है, तो अभी टोपी बदलने के बाद में मुझे कैसे करना है सब बातें, माइक्रोफोन लेके ही बात कीजिए आप। हाँ, जोर से बोलिए फिर। घर पे जब महाराज आते हैं तो उनका एक तो फूल माला से स्वागत करना चाहिए, फूल माला होना और ज़रूरी है, उनके लिए एक अच्छा आसन तैयार रखना ज़रूरी है जहाँ पर वो बैठेंगे, उनकी सुविधा के अनुसार, उनको पीठ दर्द है, पाँव घुटनों में दर्द है, किसी में है, उसके अनुसार पूरी जानकारी के साथ में उनका आसन बनाना ज़रूरी है। फिर उनके उनके लिए उनके अनुकूल जो भोजन है वही सोच समझ के आपको देना है, ऐसा नहीं कि मेरी बीवी ना वो मसाला डोसा बहुत अच्छा बनाती है, सांभर तो बहुत बढ़िया बनाती है, ऐसा हो सकता है ना, कभी कई बार हमको बहुत कठिनाई होती है उनको, क्योंकि लोग अपना एक्सपर्टीज़ दिखाना चाहते हैं बजाय उनको प्रसन्न करने के लिए, कि मेरी बीवी सांभर में कितनी एक्सपर्ट है वो मैं दिखाना चाहता हूँ गुरु जी को, रादर देन वॉट इज़ गुड फॉर हिम। तो ये सबको बाजू में रखे, उनके लिए क्या ज़रूरी है और क्या अच्छा है वो जानकारी करके वैसा ही देना चाहिए, और कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहिए, महाराज ये खीर लाइए, ये मेरे मैंने बनाया है, ये मेरी बेटी ने बनाया है, ये मेरी वाइफ ने बनाया है, ये मेरी मम्मी ने बनाया है, ऐसा करके लोग उसको खाओ खाओ करके ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। जो आप बनाएंगे उनके अनुकूल, उसको जितना उनको चाहिए उतना वो लेंगे, उसको संकोच की कोई जरूरत नहीं, आप पूछ सकते हैं प्रेम से, लेकिन उसमें दबाव नहीं होना चाहिए कि महाराज इसको थोड़ा टेस्ट कीजिए। नहीं नहीं आई डोंट वांट, नहीं नहीं महाराज मैं बेटी नहीं बनाया है, ले लो थोड़ा टेस्ट कर लो, फिर उसको ज़बरदस्ती उसको टेस्ट करना पड़ता है, वो नहीं होना चाहिए। और उनको कभी भी अनकम्फर्टेबल नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ से, बातों से या किसी चीज़ से, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, उनको सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है उनको फूलों की एलर्जी हो और आपने उनको बहुत ज़ोरदार फूलों की माला पहनाई, वो तुरंत उसको निकाल रखेंगे, तो उन्होंने महाराज महाराज प्लीज़ प्लीज़ महाराज कीप वेयर इट, माई डॉटर इज मेरिट फॉर यू, यू नो मेरी बेटी ने 3 घंटा बना के उसको बनाया महाराज, हमने 3 सेकंड भी रखा नहीं उसको, प्लीज़ महाराज कीप फॉर सम टाइम टिल आई टेक पिक्चर। तो ये सब बातों को छोड़ देना चाहिए। अतिथि जब घर पे आता है ना, तो अतिथि की प्रसन्नता ये सबसे बड़ा प्रधान काम होना चाहिए। मुझे कितनी प्रसन्नता मिलेगी कि मैंने बनाया हुआ समोसा महाराज ने 3 खाया, तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी, वो बात को बाजू में रखकर आपको गुरु महाराज को, गुरु महाराज को जितना समय देना है उतना ही समय रखना चाहिए। और उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं 3 मिनट के लिए आऊँगा, तो 4 मिनट की आपकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आए हैं तो मैं 3 मिनट का 6 मिनट कर लेता हूँ, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तरह का भाव अच्छा नहीं है। और कोई बचा है गुरुजी के बारे में, मतलब माता जी को प्रभु जी के थ्रू सेवा करना चाहिए, माता जी बनाएंगे प्रभु जी सब करेंगे उनको, सिंपल वेरी सिंपल। और नहीं अभी गुरुजी का एक विषय पूर्ण कर देते, पूरा एक विषय बड़ा विषय है, उसमें कोई प्रश्न आपके हैं गुरुजी के विषय में? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जब गुरुजी घर पे आते हैं या सन्यासी घर पे आते हैं, जब प्रसाद ले रहे हैं, तो कभी भी उनसे हैवी क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए। वो केवल गुरुजी के लिए नहीं, लेकिन प्रसाद खाते समय कोई भी भक्त को कभी भी हैवी बातें नहीं करनी चाहिए, या तो हैवी शास्त्र के प्रश्न नहीं करने चाहिए। अंदर अंदर कर जाना, हैवी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, या कोई हैवी समस्या आपके घर पे, कोई मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है या किसी और बेटे का बाप का झगड़ा चल रहा है, तो ऐसे हैवी क्वेश्चंस उनको प्रसाद के समय नहीं पूछने चाहिए। आप उनको कष्ट दे रहे हो बहुत, एक तरफ से प्रसाद खिला रहे हो, मेरी बीवी ने बनाया, मेरी लड़की ने बनाया करके, और ऊपर से उनको ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो कि उनको दिमाग को कष्ट हो रहा है उस समय आंसर देने के लिए। तो प्रसाद खाए कि आंसर दें, ऐसी दुविधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। देयर शुड बी नो हैरेसमेंट, इंटेलेक्चुअल इमोशनल और फिजिकल, फिजिकल इन द फॉर्म ऑफ गिविंग मोर एंड मोर फूड, इंटेलेक्चुअल इन द फॉर्म ऑफ आस्किंग हैवी क्वेश्चंस, एंड इमोशनल इन द आस्क इन द फॉर्म ऑफ वेरी डेलिकेट इंट्रिकेट फैमिली मैटर क्वेश्चंस, वो नहीं होना चाहिए। आपका प्रश्न का उत्तर मिला आपको? ऐसा एटिकेट है जो मुझे श्रीधर महाराज ने बताया था कि जब कोई मेहमान घर पे आता है तो प्रसाद के समय पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दोनों पति पत्नी किचन में है और वो बोल रहा है जल्दी रोटी बना दे मुझे श्रीधर के ना, और गेस्ट के साथ में कोई नहीं है, वो अकेले खा के बैठा हुआ। तो उस समय ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि एक व्यक्ति उनके साथ में बैठ कर लाइट टॉक्स करते रहना चाहिए, अटेंडेंस के टाइप में, बाकी लोग सर्विस में बिजी रहना चाहिए। आजकल के घर में खड़ पति पत्नी होते हैं, बेचारे क्या करेंगे, अगर पति बैठ गए तो बोलो चपाती नहीं है चपाती लेके आओ, तो जाना पड़ता है उसको बोलने के लिए, अंदर गए तो भाई अकेले हो जाते हैं ऐसे होता है ना कई बार। तो कोई बड़े कोई भक्त घर पे आ रहे हैं, कोई बहुत सीनियर डिवोटी आ रहे हैं, एक आध दो दोस्तों को बुला के रखो, आप उनको बोलो आप इनके साथ बैठो और थोड़ी हल्की हल्की बातें करते रहना, यहाँ वहाँ की हल्की फुल्की बातें, और फिर होस्ट जो है बिजी रह सकते हैं। बट गेस्ट को ऐसा, गेस्ट हॉल में बैठ के खा रहे हैं और किचन में पति पत्नी दोनों बिजी हैं कुछ बनाने में और लाने में, कोई तैयार नहीं है और वो बैठे हुए हैं, वो खा रहे हैं लेकिन कोई है नहीं उधर, तो वो सत्कार उनका अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड क्वालिटी सत्कार। वे आप पूछ रहे थे ब्रह्मचारी के बारे में, अधिकतर यही नियम है उनके लिए भी, सबके लिए अधिकतर यही नियम है, लेकिन खास करके ब्रह्मचारियों के साथ में स्त्रियों का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रह्मचारी को लेडीज सर्व कर रहे हैं प्रसाद घर में, आग्रह कर रहे हैं, बार बार बोल रहे प्रभु जी आप लीजिए, प्रभु जी आपको ये बहुत पसंद है मुझे पता है, मुझे उन्होंने बताया था आप लीजिए उसको, आपको पैटिस बहुत पसंद है आप खाते क्यों नहीं हो, इस तरह का जो इंट्रैक्शन है वो औरतों के बीच में ब्रह्मचारी के बीच में नहीं होना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचारी लोग जो है ना वो ब्रह्मचर्य पालन करने का कोशिश करते हैं, मतलब यार इट्स अ हार्ड एफर्ट फॉर देम टू मेंटेन ब्रह्मचर्य, और उसमें से वो आगे सन्यासी बनने के उनका लक्ष्य होता है, लेकिन हो जरूरी नहीं कि वो ब्रह्मचारी जो है वो एकदम विरक्त हो गया है। कई बार वो स्त्रियों के ऐसे इस प्रकार के व्यवहार से उनके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। जनरली वो मंदिर में अपने ठीक रहते, लेकिन जब भी वो जाते किसी प्रोग्राम में और वहाँ पर जब कोई स्त्रियाँ, कोई यंग लेडीज़ और कोई मैरिड लेडीज़ जब उनको इस प्रकार का सेवा करते हैं तो उनका मन थोड़ा सा बहक सकता है। इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए हमको अपनी स्त्रियों से उनको दूर रखना चाहिए, और अगर में नहीं कोई है तो आप कोई पुरुष मित्रों को बुलाइए और उनके द्वारा सेवा कराइए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वो कैसा है ना, स्त्रियों की तरफ से ब्रह्मचारियों की ओर ये भाव होना चाहिए कि उनको हमको अपने आप को दूर रखना है इनसे, डोंट बॉदर देम। तो हमको लगता कई लोगों को क्या लगता है पता है कि विरक्त लोगों की सेवा करने से हमको बहुत लाभ होगा गृहस्थियों को, ये बात सच है, लेकिन उसका अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। आपको मौका मिलेगा तो आप कीजिए सेवा, जरूरी नहीं कि वो वन टू वन ही सर्विस करके आपको उसका मौका फायदा मिलेगा। कैसे होता है देखो, अभी समझो कोई ब्रह्मचारी भोजन के लिए आ रहे हैं समझो, तो हम लोग भी चार पांच माता जी को फोन करते हैं कि प्रभु जी माता जी आप थोड़ा पैटिस बना के भेजिए, माता जी आप सब्जी बना के भेजिए, तो वो इतनी उत्सुक नहीं रहती उसके लिए, क्योंकि क्या है मैं तो घर पर बनाऊंगी और भेज दूंगी, वो कोई सर्विस करेगा, मेरा कुछ कनेक्शन ही नहीं। आप बोलेंगे माता जी आप लेके आइए और आपको सर्विस भी करना है तो तुरंत आएंगे वो, दिस इज नेचुरल, गलत कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों को ऐसा भाव रखना चाहिए कि मुझे सेवा मिल रही है तो वो मुझे करना चाहिए, मुझे उसका रिकग्निशन मिलेगा, थैंक यू मिलेगा, या वो खाने वाले लोग मुझे देखेंगे और बोलेंगे ये बहुत बढ़िया है, ये अपेक्षा करके हमको नहीं करना है। अगर आपको वास्तव में विरक्त लोगों की सेवा करके लाभ लेना है तो आपको भी विरक्त होकर उनकी सेवा करना चाहिए, जस्ट डू इट एज पर टोल्ड। जैसे ब्रजेश्वरी ने एक बार एक माता जी को बताया था कि आप सांबार बनाओ लेकिन उसमें बिल्कुल भी चिली नहीं होना चाहिए, अभी उनका डाइट है वो नहीं खा सकते, वो चिली किसी प्रकार खा सकते नहीं, तो माता जी को बहुत गाइड किया इन्होंने, बहुत सारा बताया कि ये नहीं डालना चाहिए, ये खाली इतना ही डालना है बस आपको, फिर भी उसके मन में ऐसा विचार आया कि लाल चिली का तड़का दिए बिना सांबार कैसे हो सकता है, तो उसमें लाल चिली का एक तड़का दे दिया, तो महाराज इतना वो महाराज आए थे निरंजन महाराज, उनको इतना नाक से पानी आंख से पानी आ रहा है, बोले आई टोल्ड यू नॉट टू पुट चिलीज। अभी उसने बताने के बाद भी उसको जो करना था वही किया, जो व्यक्ति के लिए जरूरी है वो नहीं किया, अपना जो है वही दिमाग चलाया उसके ऊपर। तो फिर ऐसे लोगों को सेवा देने में बहुत कष्ट होता है हमको, क्योंकि जिम्मेदारी तो हमारी है ना, हमारे अंडर उनकी सेवा है, वो हम किसी को देने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी लाभ देने के लिए, और वो अपना दिमाग चला के कर रहे हैं। तो ये विशेष रूप से ब्रह्मचारी सन्यासियों की सेवा में आपको ध्यान रखना चाहिए, आप कितने किस चीज़ में एक्सपर्ट हो उसको कोई वैल्यू नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, आपको क्या कहा गया है वो आपको करना है, सिंपल। आपको बोला है माला बना दो तो आपको माला बनानी है, नहीं नहीं मैं आके पहनाना चाहती हूँ या माता गुरु महाराज को, नॉट नेसेसरी। तो जो गोपियों का कैसा रहता है, गोपियों को कहा जाता है कि आपको आज आपको पीले फूल बिनने हैं, तो आपके केवल पीले ही फूल बिनने चाहिए, वो आपके पीले फूल से अधिक सुंदर गुलाबी फूल वहाँ पर उपस्थित है, आपको नहीं बिनना चाहिए उसको, आपका फोकस जो है ना वो एकाग्र होना चाहिए, मुझे पीले फूल कहे गए हैं मैं पीले फूल बिनूंगी, उसके बाद माला वो बनाएगी और वो माला वो राधा रानी को देगी, फिर राधा रानी देखेंगी क्या करना है उसका, पहनाएगी नहीं पहनाएगी, पैरों में रखे रखेंगी, हाथ में देंगी, उनके बालों में डालेंगी, वह देंगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका काम पीले फूल बिनने का था बस, दैट शुड बी योर मेडिटेशन, आपका चिंतन जो है वो उस बात पर होना चाहिए। और यही बात जो गोपी वाली पीले फूल वाली है, यही ब्रह्मचारी सन्यासी के बारे में लागू है। हर चीज़ में आपको देखना है कि उनको प्रसन्नता मिलनी चाहिए। मेरा गौरव हो, मेरा आइटम खाया नहीं खाया, समझा आपने, जिस आप आइटम में आप इतने एक्सपर्ट हो, आपने वो इतना प्रेम से 3 दिन से आपने बना कर रखा है और उसको गुरुजी ने हाथ भी नहीं लगाया, तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने अपना काम कर दिया है। बाद में आपको वो खाना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्टिफिकेट के बिना तो ये संतुष्टि होगी ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो देखते हैं कि हाथ ही लगाया नहीं, फिर वो भीड़ में से आते हैं, महाराज यू डिडंट टेक प्रैक्टिस, दिस इज आई मेड महाराज, तो नो 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 आई एम ओके, नो नो महाराज टेक महाराज, आई 3 डेज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर, तो ज़बरदस्ती वो खाते हैं, उनको उसमें से कृपा नहीं मिलती जब वो दिल से नहीं उसको आस्वादन करते हैं। तो हमें केवल सेवा से अटैचमेंट होना चाहिए, एक बड़ा एटिकेट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सेवा दी गई है वो सेवा शक्ति हमारी आसक्ति होनी चाहिए, वो सेवा का फल मतलब अप्रिसिएशन, सराहना, थैंक यू, उसको अटैचमेंट नहीं होना चाहिए हमारा। बहुत ऊंची चीज़ है ये, बहुत मुश्किल चीज़ है, आमतौर पर सब लोगों को शाबाश की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे उठने का कोशिश करना चाहिए। और बताइए। यस जितना हो सके उतना दूर रखना अच्छा है ब्रह्मचारियों से, वो पापा का लॉके देंगे, पापा सर्विस करते रहेंगे, या देना ही है तो आप शांति से सेवा करें चले जाइए, नो नीड टू इंटरेक्ट। प्रभु जी बैठे ना, पापा बैठे हुए हैं, वो पूछेंगे रोटी चाहिए प्रभु जी, हाँ दे दो अम्बा रोटी दे दो, ठीक है। ब्रह्मचारियों के खास दूर रहना चाहिए।
नहीं,
दूर बैठना चाहिए हमेशा, ब्रह्मचारियों से दूर ही बैठना चाहिए। कैसा है ना, वो एक अपने जीवन की ऐसी स्थिति में है जो कोशिश कर रहे हैं इस बात से दूर रहने की, तो उनके मार्ग में कष्ट नहीं पैदा करना चाहिए। अभी जवान लड़कियां अगर कुरूप भी होंगी तो भी अट्रैक्टिव रहती है हमेशा, श्लोक है उसका संस्कृत में कि अगर गधी भी 16 साल की हो जाएगी तो सुंदर दिखती है वो, ऐसा 16 वर्ष गर्भ गर्द भी, ऐसा एक श्लोक है। मतलब कहने का मतलब यौवन एक ऐसी चीज़ है जो कितनी भी कुरूप स्त्री होगी तो यौवन में वो सुंदर दिखती है, आकर्षित लगती है वो। तो ऐसी स्थिति में हमको उनके ऊपर करुणा करके दूर रखना चाहिए अपने आप को। यस प्रभु जी, हाँ बोलो बोलो, हाँ माइक्रोफोन पे बोलो सब लोग। नहीं, मैंने कहा ना आप आके रह सकते हो, लेकिन बातों करने की जरूरत नहीं है, पापा बैठे हुए हैं, भाई सकते बैठ सकते, दूर बैठना चाहिए दूर, नो नीड टू सिट क्लोज। और सेकंड थिंग बताना भूल गया मैं, उनको वस्त्र जो है ना वो रिस्पेक्टेबल पहनने चाहिए लड़कियों को, खास करके जो ब्रह्मचारी की सेवा में रहते हैं। ऐसा नहीं कि स्लैक्स और टी शर्ट और टाइट्स और बाल छोड़ के उनकी सेवा कर रहे हैं मॉडर्न स्टाइल में, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग टू ब्रह्मचारी, दे डोंट वांट टू कम टू द हाउस अगेन। तो अगर रहना ही, अगर आपके घर में तीनों लड़कियाँ हैं, समझो चारों लड़कियाँ आपके पास, एक कज़िन है, 3 अपनी लड़कियाँ हैं और एक ही पुरुष है घर में, वो तो सेवा करना है तो, लेकिन थोड़ा ढंग से ही करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली करना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उन बातों से।
जैसे प्रसाद,
तो मैंने कहा पहले उत्तर दिया उसका, प्रसाद आप दे सकते हो, लेकिन यू नो हाउ टू आस्क योरसेल्फ, प्रभु जी और दूं क्या, अरे प्रभु जी बैठे ना पूछने के लिए, वो पूछेंगे, आप खाली देने का काम करो बस, दैट्स ऑल। व्हाट डू यू से राजेश्वरी? एज मच लेस इंटरेक्शन एज पॉसिबल।
कम्युनिकेशन में कई सारे भक्त होते हैं, जैसे हम लोग हमारे कम्युनिकेशन में ले लें, जब बच्चियां थी, ठीक है, तो हम लोग ने जब देखा उनको तो बिल्कुल बच्चियां थी, तो अभी हम लोग भी बड़े हुए तो लोग भी बच्चियां भी, अभी अभी बच्चियां हमारे लिए बच्चियां ही हैं लेकिन फिर भी
जवान हो गई,
जवान हो गई, तो अभी हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा होना चाहिए, जो पहले जैसे हम लोग।
प्रभुपाद जी एक बार अपने कमरे में बैठे थे, तभी वो कुछ 79 ईयर्स के थे, उनकी सिस्टर को 70 ईयर्स की थी, पिशी माँ, तो अचानक उनको मिलने को आई। तो प्रभुपाद जी अभी कुछ चीज़ से निवृत्त हो रहे थे, मतलब ऐसे सब छोड़ के उनको जाने वाले थे, प्रभुपाद जी विश्राम करने वाले, मैं पिशी माँ आ गई। तो जो ब्रह्मचारी उनके रूम में बैठे थे, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी बैठो, उनको बोला बैठो बैठो आप बैठो उधर, तो उनका कोई सेवा हो गई तो बैठ गया वो। फिर बहुत देर तक पिशी माँ उनके अंत में नोक झोंक चलती रही, पिशी माँ कुछ बोल रही है, उनको ताने मार रही है, फिर वो कुछ पिशी माँ को बोल रहे हैं, भाई बहन है ना वो, तो बहुत देर तक चलता रहा उनका, कुछ प्रेम की बातें हुई, कुछ ताने मारना हो गया, कुछ बहुत सारा हो गया, तो खाने पीने की बातें हो गई, उन्होंने कुछ प्रभुपाद जी को ऐसा कुछ बोला भाई के रूप में, और फिर वो उनका मीटिंग समाप्त हो गया और वो पिशी माँ जाने लगी। तो प्रभुपाद जी ने कहा ब्रह्मचारी को, अच्छा जाओ आप अभी। तो प्रभुपाद जी का उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी कुछ सेवा थी क्या मुझे आपने बहुत देर तक बिठाया, बोले तुम्हारी यही सेवा थी कि तो यहाँ बैठना जब मैं मेरी बहन को मिल रहा हूँ। प्रभुपाद आपकी सिस्टर तो 70 ईयर ओल्ड है, बोले 70 ईयर ओल्ड हूँ और मैं 80 साल का हूँ, फिर भी वो स्त्री है और मैं पुरुष हूँ, सन्यासी हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी भी स्त्री से अकेले में ना मिलूँ, ये मेरा सन्यास धर्म का ड्यूटी है, चाहे मेरे वो बहन हो, मेरी बेटी हो या मेरी और कोई हो रिश्तेदारी में। लेकिन ये उन्होंने एटिकेट पालन किया एक उदाहरण के रूप में कि स्त्री को, स्त्री से पुरुष को या तो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई हो, दूर ही रहना चाहिए, चाहे पुरुष 80 साल का हो, 90 साल का हो, स्त्री 80 साल की हो, शास्त्र कहता है कि वो दूर ही रहना चाहिए, सेफेस्ट थिंग टू डू इज कीप अवे। अभी आपके विषय के बारे में जो आपने प्रश्न किया है कि वो तो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, वो गुब्बारे गोद खेलती थी, तभी हम 25 साल के थे, अभी हम 40 के हो गए, वो 15 साल की हो गई है, फिर हम 42 के हो गए, 17 साल की हो गई है, फिर हम 45 के हो गए तो 20 ईयर्स की हो गई है ना। तो महाराज जी का हमारा एक उसमें उदाहरण है, क्या था वो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, फिर वो पास आ गई तो महाराज सेड ओ नाउ यू आर माता जी सो आई विल नॉट बी एबल टू टच यू, समझ आए, बड़े प्रेम से उन्होंने एकदम बहुत अच्छी तरह से बताया, लेकिन एक बात को क्लियरली बताया कि जब आप इतनी सी थी तो महाराज उनको गोद में भी लेते थे, हमारी रूप मंजर को लेते थे, उसका पैर उठाते थे ऐसा, एक पैर जमीन पे एक ऐसा ऊपर, ऐसा क्या कुछ भी करते थे। लेकिन एक स्थिति आगे बोले अभी तो आप माता जी हो गई, रूप मंजर के बारे में ना ये बात, अभी आप माता जी हो गई, अभी आप बैठो वहाँ पर, क्योंकि हमको भौतिक दुनिया के जो स्थितियां हैं, मतलब फिजियोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं उसको, जो प्राकृतिक चेंजेस शरीर में होते हैं उसका आदर करना सीखना चाहिए, और उसके अंदर जो शक्ति होती है उसका भी आदर करना चाहिए, ऐसा अपने आप को ऐसा समझना नहीं चाहिए कि मैं तो क्या हूँ, तो उसको परे हूँ, तो मेरी बेटी है। शास्त्र कहता है कि बेटी, बहन और माँ, इनके साथ गृहस्थ को भी अकेले संग नहीं करना चाहिए, अकेले में। अभी आप बोले क्या है ये सब, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कैसा शास्त्र आपका है, मेरे को नहीं आना आपके हरे कृष्ण मंदिर में, व्हाट नॉनसेंस। तो आप बोलेंगे मनुस्मृति में लिखा है, अरे मनु को मारो गोली, ये मनु संहिता में क्या क्या लिखा है, बहुत भयंकर चीज़ लिखी हुई, ये भी कोई बात है क्या। लेकिन अगर आप गहराई में सोचोगे उसको तो उसमें बहुत तथ्य है, क्योंकि वो स्त्री जो है वो आपकी माँ भी हो सकती है या आपकी कन्या हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, लेकिन स्त्री तो स्त्री होती है। और जिस व्यक्ति को भक्ति मार्ग में वास्तव रूप में प्रगति करनी है, उनको आपको संबंध संपर्क रखने में कोई बुराई नहीं है, उसके अंदर आप चार लोग के बीच में बैठ के बात करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निषेध 1-to-1 अकेले कमरे में बैठने का है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कहा कि आपको बात ही नहीं करनी चाहिए, आपकी बेटी जवान हो गई आपका बात करना बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे कोई। परिवार में संगति में रह के बात कर रहे हैं अच्छी बात है, उसको करना ही चाहिए। निषेध केवल एकांत में बैठकर नहीं करना चाहिए, यह निषेध है, इतना छोटा निषेध है, बहुत महत्वपूर्ण निषेध है। कई सारे जो फॉल डाउन सन्यासियों में होते हैं ना, हर संप्रदाय में संप्रदाय सन्यासियों के फॉल डाउन होते हैं, और कैसे होते हैं वो सन्यासी बहुत यशस्वी होता है, मतलब उसके अंदर बहुत प्रचार कर रहे हैं वो, बहुत जगह पर उनके शिष्य समुदाय है, बहुत उनका प्रचार में पावर है, वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं उनसे, फिर वो प्रचार करते करते एकदम थक जाते हैं, शरीर से दुर्लक्ष करते हुए बीमार पड़ जाते हैं। इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उनको फिर प्रचार करने को होता ही नहीं, मतलब एक जगह पड़े हुए हैं, इलाज हो रहा है ठीक ही नहीं हो रहा, इतने थके हुए, इतना उनका इम्यूनिटी डाउन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो क्या, शिष्य लोग क्या करते हैं, व्हाटएवर को जो पॉसिबल वैद्य है उसको बुलाते हैं, इससे नहीं तो उससे, वो चंडीगढ़ में कोई है बाबा है, इधर कोई अमरावती में कोई है, इधर कोई पंडरपुर में कोई है, नब्ज़ देखता है, दवा देता है। जब वो मामला बहुत बिगड़ता है ना, तभी वो फिर डेस्परेट हो जाते हैं शिष्य लोग। फिर अचानक एक स्त्री पैदा होती है कोई, तो भी थाईलैंड से आई हुई, वो कुछ प्रेशर देके इलाज करती है, फिर वो आना शुरू करती है। फिर पहले पहले शिष्यों के संग में उनका प्रेशर का ट्रीटमेंट होता है, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि शिष्य सब चले गए होते हैं और वो आ जाती है, उसको टाइम नहीं आता रहने का, तो सन्यासी अकेला है, फिर वो प्रेशर देती है उसको। फिर कुछ दिन बाद खबर आती है कि उसका उसके साथ विवाह हो गया। कैसे, कितनी कहानी है। इलाज करने के लिए आई है वो, कुछ शादी करने के मन से नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही एकांत में कुछ संपर्क हो गया किसी कारण से, एकांत में और कोई देखने वाला नहीं उसमें, फिर मन में तो गुल खेलने लगते हैं हर प्रकार के। इसलिए प्रकृति के इस नियम को हम लोग ये सोच नहीं सकते कि हम लोग ना उसके परे हैं, हम लोग तो 50 साल से जप कर रहे हैं, क्या उसमें अभी तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हमारे अंदर, ये समझना गलत है। 80 साल का डेथ बेड पे पड़ा हुआ आईसीयू का मरीज भी एक नज़र यंग नर्स को देख लेता है मुड़ मुड़ के, वो डेथ बेड पे है अभी, वो आईसीयू में है, वो मरने वाला है कुछ दिन के बाद में, फिर भी उसकी नज़र जवान नर्स पर जाती है, क्योंकि ये काम येष क्रोध येष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा, ये जीव का अनंत काल से सबसे भयंकर शत्रु है ये, जो जीव के सर्वनाश के लिए कारण होता है, और इससे कोई भी मुक्त नहीं है। कोई भी जीव जो शरीरधारी है, देहधारी है आज की स्थिति में, चाहे वो सिद्ध आत्मा है, लेकिन वो जब शरीर में है तब तक शरीर कब उसकी दीप जलाएगा उसका, वो पता नहीं चलता है। इसलिए कभी भी ऐसा मत समझना कि मैं तो इम्यून हो गया अभी, मैं तो इसके परे चला गया। कभी भी किसी भी स्त्री को या किसी पुरुष को ये सोचना नहीं चाहिए, जब तक आपको शरीर है तब तक वास्तव में आप विरक्त हो गए हो, फिर भी आपको इस नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि किस समय हमारा अहम जागृत होगा, और अहम का पहला परिणाम है वासना। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू थिंक यू आर द डूअर एंड यू आर द स्वामी, यू आर द मास्टर, ये जब होगा उधर से ही अल्टीम जो घसरगुंडी है ना, वो क्या कहते हैं उसको, फिसलन पहाड़ी, उसके लास्ट स्टॉप जो है वो सेक्स है। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी अगर वो कन्या छोटी सी अगर जवान हो गई है, तो हमारा फिर वो गले लगाना और वो स्थिति बंद होनी चाहिए सब कुछ। वी कैनॉट थिंक कि मैं इतना सीनियर हूँ कि मैं, ये तो मेरे से 35 साल छोटी लड़की है, मैं तो अभी 60 साल का हो गया हूँ, बहुत सीनियर, 40 ईयर से मैं डिवोटी हूँ, और ऐसे कई पीढ़ियों को गाइड कर चुका हूँ, ये तो मेरी गोद खेली हुई मेरी पोती है, ऐसा अलग सा लग सकता है आपको, लेकिन जैसे ही वो सयानी हो गई तो आपका दूर रखना उनको ज़रूरी है। आप प्रेम करो उनको, सच पूरा वात्सल्य प्रेम सब दे दो उनको आप, लेकिन दूर से, नो फिजिकल कनेक्शंस।
जिसमें कि मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मदर इन लॉ नहीं है, फादर इन लॉ है, और उनके हस्बैंड को काफी रूट पे रहना रहता है,
रूट रूट मतलब ट्रैवलिंग,
तो ऐसे में जब वो अपने फादर इन लॉ के साथ घर पर हैं, अकेले हैं, तो उनको कैसा कॉन्टेक्ट मेंटेन करना चाहिए?
मुश्किल क्वेश्चन है बहुत ही, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि वो इन जनरल लोग काफी इंटरेक्टिव हैं, बात करते हैं, तो कैसे वो एक
मुश्किल स्थिति है, आई अंडरस्टैंड, बट इसका एक फिक्स जवाब देना भी अच्छा नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपको स्थिति को देखकर चलना चाहिए। क्योंकि कैसा है ना, मैंने आपको बता दिया एक बार कि 80 साल का आदमी जो शरीर से जर्जर हो चुका है, उसके मन में भी बहुत सारे गलत विचार आते रहते हैं, क्योंकि शरीर बुढ़ा हो गया, मन तो नहीं हुआ ना बुढ़ा, मन तो अभी भी भोगी है। तो इसमें मेरा काफी इसमें कई उदाहरण का अनुभव है कि जितना नहीं होता उतना अच्छा है। और फिर ये भी हमने केसेस देखे हैं कि फिर वो बुढ़ा आदमी जो है वो मिसबिहेव करता है सेवा करने वाले बहू से, ये भी सब हमने गंदी गंदी बातों को हैंडल किया है पुराने समय पे। तो आइडियली ये सिचुएशन अच्छा नहीं है। अगर पति ट्रैवल करता है तो पति को ये देखना चाहिए कि अगर मेरी पत्नी को अगर मेरे पिताजी की सेवा करनी पड़ रही है तो उसको कुछ इंतजाम करके जाना चाहिए। ही कांट जस्ट से कि व्हाट टू डू, आई एम ट्रैवलिंग, यू टेक केयर। बहुत गलत चीज़ है ये। मैं ये ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मैं किसी मेरे रिलेटिव पुरुष को घर में रख के इनको ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, ये गलत बात है बिल्कुल। इट्स केयरलेसनेस फ्रॉम हस्बैंड्स पार्ट ऑफ यू कि ही इज पुटिंग हर इन सच अ कंडीशन कि करना तो भी तकलीफ, नहीं करना तो भी तकलीफ, दोनों तरफ से एम्बेरसमेंट, संकोच। एक तरफ से परिवार का प्रेशर है कि आपको सेवा करनी चाहिए ससुर की, एक तरफ से ये कष्ट है और व्यक्ति जो सेवा की जा रही है वो तो भक्त वक्त तो है नहीं, है ना। एक मिनट, तो मैं तो कहूँगा कि ऐसी स्थिति आने के पहले उसका प्लानिंग होना चाहिए कि इस स्थिति में स्थिति को अपने पत्नी को ऊपर डालने के पहले ही उसका प्लानिंग होना चाहिए कि हाउ टू हैंडल दिस, दैट इज इंटेलिजेंस। नॉट कि आप ऐसे हाथ ऊपर करके चले जाते हो, बाद में पत्नी को स्थिति में डाल के चले जाते हो, बाद में उसके कुछ गलत परिणाम होते हैं, बाद में फिर आते हो बाहर से टूर छोड़ के, उससे अच्छा पहले से टूर छोड़ के आ जाओ ना और बाद में प्लानिंग करके चले जाओ, नहीं तो किसी और व्यवस्था करो। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस, मतलब वाई टू सब्जेक्ट यूर वाइफ इन टू सच अ सिचुएशन वेयर शी विल बी टोटली एम्बरेस्ड दिस वे एंड दैट वे। यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट हर एंड टेक केयर ऑफ हर, तो यू मेक द सोल्यूशन, यू फाइंड समबडी आउट एंड और गिव सर्विस समबडी एल्स हू कैन डू इट नाइसली। बट प्रभुपाद जी इसके बारे में इतने स्ट्रिक्ट थे तो हम वी शुड नॉट थिंक कि हम लोग बियॉन्ड प्रभुपाद हैं, है ना। मतलब प्रभुपाद तो ठीक थे लेकिन मैं तो अभी हैंडल कर सकता हूँ इसको, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी
दो
कभी समझेंगे नहीं इस बात को, छोड़ दो उनको, बात ही मत करो उनके साथ, हम भक्तों की बात कर रहे हैं। ये बातें ना बहुत डेलिकेट है और ये डिस्कशन भी बहुत डेलिकेट डिस्कशन है। ये हम वैष्णव सदाचार के टॉपिक के अंडर डिस्कस कर रहे हैं, हम केवल सदाचार के टॉपिक में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग वैष्णव सदाचार इस टॉपिक के अंडर डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्कशन केवल वैष्णवों को लागू है, जो लोग वैष्णव नहीं है वो आपके ऊपर इतना गुस्सा करेंगे अगर ये सुनेंगे तो बातें, ये अगर सुनाएंगे आप टेप इसको तो एकदम गुस्सा करेंगे आपके ऊपर, कैसा आपका संप्रदाय, क्या आप नॉनसेंस बात करते हैं, आप लोग ऐसे बात करेंगे लोग, क्योंकि वो जिस स्तर पे ऊपर जिस स्तर के खड़े ऊपर खड़े होकर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं वो स्तर पे ही नहीं है वो, तो कैसे समझ में आएगा आपको क्या हम लोग बोल रहे हैं। उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम लोग केवल अगर वैष्णव बहू है और नई भक्त है ऐसा ससुर जी है तो हम लोग आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको। अगर दोनों नई भक्त हैं तो फिर वो जो उनको करना है उनको समाज के अनुसार करने दो, वो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन सच्चाई उससे मिटती नहीं है। कभी भी कोई भी मक्खन जो है ना ये नहीं कह सकता कि मैं इस बार तो आग में रहकर भी मैं पिघलूंगा नहीं, ऐसा कोई मक्खन दुनिया में नहीं है। नहीं, मैं रेफ्रिजरेटर 15 दिन रह के आया हूँ। नहीं, आप रेफ्रिजरेटर 15 महीने भी रहोगे लेकिन जिस क्षण में आपके आग के सामने हो जाएगा पिघल जाओगे, दैट इज द रियलिटी ऑफ द नेचर, है ना। यस प्रभु जी,
प्रभु जी स्पेशली इन द केस ऑफ सन्यासी इज इट ओके टू टेक हेल्प फ्रॉम द डोमेस्टिक हेल्प इन कुकिंग।
हमारी ब्रजेश्वरी देवी कभी भी उनका उनके लिए किसी से सेवा लेती नहीं है, बिकॉज दे डिज इधर डोर क्लोज करो ना प्लीज। हाँ, सो वी डोंट जनरली इन्वॉल्व सर्वेंट्स इन हेल्पिंग कुकिंग फॉर सन्यासीज। वी कैन टेक हेल्प टू कट वेजिटेबल्स ऑल दिस थिंग, बट फायर कनेक्टेड वर्क जो है ना कुकिंग का, वी डोंट नॉट अलाउ टू अदर्स बिकॉज दे हैव टेकन सन्यासी लाइफ अ स्टैंडर्ड ऑफ वेरी प्योर लाइफ प्यूरिटी austerity they have taken up, so they deserve to be getting food from at least a initiated devotee, or most important is Brahmin initiated devotee, that is their क्वालिफिकेशन. तो वी शुड नॉट डायल्यूट इट बिकॉज दे हैव कम टू माई हाउस एंड सन्यासी डजंट नो मेरे लिए हु इज कुकिंग फॉर मी. सर्वेंट इज कुकिंग, हु इज च्यूइंग टोबैको, वॉट एवर अनक्लीन लेडी इज कुकिंग और वॉट दैट. इट्स नॉट अ गुड थिंग.
Also, Prabhuji, then is it okay that devotees, those who are not having deities in their home, you know, like altar photos of their, so can they invite sannyasis?
Anybody can invite sannyasis, but see that maximum possible initiated devotees cook for them. Because through food, lots of bhavna and lots of vikar, lots of anarthas go. Through food. Those who cook, their consciousness goes in the food. And that affects the person who eats it. Unless he is very highly transcendental personality. So when we invite sannyasi at our house, we have to be also kind enough not to contaminate his consciousness. Taking it for granted that he is so elevated. Yes, he is elevated, but you don't contaminate on him. If you are wearing white, perfectly white kurta, and you put one microgram of a black dirt on that, it will be still dirt now on that. So don't assume that he is so transcendental ki he can consume and burn all those sins when he eats prasad. We shouldn't think for somebody else like this. You follow the standards, what is given to you. That is better. Yeah, give everybody chance here also. Yeah.
देखिए जैसे क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं तो एक हंसी मजाक करने का टेंडेंसी हमारे में है. तो हम लोग जैसे कभी कभी हंसी मजाक करते हैं आपस में. तो अगर माता जी लोग हैं
नहीं करना चाहिए. जैसे हमारे ऑफिस में भक्तिवेदन हॉस्पिटल में कृष्ण कॉन्शियस एटमॉस्फेयर है जो हम रखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं उसके लिए. तो हमारा क्लियर इंस्ट्रक्शन है उनके लिए, स्त्री एम्प्लॉयज के साथ में काम के अलावा कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए. खाली बैठे हुए हैं, नो गॉसिप शुड बी गोइंग ऑन देयर. अभी वो 100% फॉलो करते हैं, इसका गारंटी आई कैन नॉट गिव यू, बट स्टैंडर्ड यही है कि वी डोंट वांट टू सी लेडीज एंड मेन सिटिंग टुगेदर टॉकिंग कैजुअली एंड यू नो पासिंग जोक्स एंड कमेंट्स हियर एंड देयर एंड कीपिंग अ लाइट एटमॉस्फेयर. द लाइट एटमॉस्फेयर ऑलवेज इंड्यूसेस यू टू हैव डिजायर टू एंजॉय. This desire to enjoy with women and men is so strong that it is ignited only through this kind of light conversations. This is what I am talking about. Non-devotee employees ke liye hamara niyam hai. To keep the sanctity of the atmosphere. What to speak of devotee parent, a devotee men and women. We are all advised that even if you are grahasthas, not necessarily brahmachari or vanprasthi or sannyasi, even if you are grahasthas, interact with women only what is necessary to be interactive. There is no need of going two steps ahead and joking and you know, passing some light comment. There is no need because everything is ultimately going to lead you to some nonsense activity. And you cannot be so sure, ki, no, I am not like this. You cannot be too confident about yourself. Better to follow strictly the rules given by scriptures. Respect them. Respectfully follow them. But respect the rule. That it is important rule. I am not beyond this rule, or I am not transcendental or immune to this rule. We have to keep this in mind. So for service sake, if you are doing a joint project, for example, you are doing Shivaji Park Rath Yatra, and there are many men, many women involved, and they are there for long time together, and they eat vada pav together because they are long time together. They eat snacks together. They eat ice cream together. They eat lunch together. They may drink together, whatever, juices and everything. But they are whole day together, so sometimes there are light moments and all. But a sincere devotee should keep it up to his limit. Not exploit the available time free with a woman to do some light jokes and here and there. No. If you are serious sadhakas, then see that keep women away as far as possible. Keep men away as far as possible. This is our standard guideline we give to all our employees, non-devotee employees, devotee employees, to all our counselees, everybody we give one standard, constant advice. This one matter in life, please keep away if you want to really make progress in Krishna consciousness. because you may not fall down to the physical activity with a woman or a man, but mental activities keep contaminating you constantly. That nobody is watching, only you know. And you enjoy that mental activity because nobody is watching you or nobody knows you. Externally, we behave as a sincere, advanced devotee. Internally, मन में लड्डू खाते रहते हम लोग. So we have to be very careful about this thing. You cannot take us for granted. Yes. Yes. Yes.
When we invite in our center brahmachari or a group of brahmachari for kirtan or rath yatra, usually this trend has come from the foreign countries. Young girls keep dancing near them. So are we supposed to consciously keep teenage girls and young girls away from that?
It is always safe to do that. It may appear fanatic, but it is safe. I may not be able to speak the same lines with same intensity when if I speak in London. Like, if I am in London, suppose now, and I am addressing London devotees and Western body devotees, I may not speak any of these things. I am speaking this thing boldly because you are Indian audience. We have some certain cultural strength over here that we have been brought up with. So I can boldly speak to all of you, my mind, without much censor. But if I am in America, or if I am in Europe, or I am in England, then I will speak in different language. But there, this will appear to be crazy activity, actually, what you are speaking. But because you have been brought up in Indian culture to a large degree, you can relate to me what I am saying. There, even amongst devotees, amongst our senior most devotees, they change wives every 3 months or every 3 years maybe, every 1 year. They have a budget of divorce and settlement, and they have provision for the next. Every time when the lawyer or CA makes you a budget, yearly budget, he budgets also for divorce activity. Yeah, I mean, it's like animalistic life, you know. You like somebody, you stay. You don't like, they go to next one. And mostly they are, I'll tell you, mostly they are your godbrother's friend's wife. Mostly. Because what happens, suppose I be me and she are husband wife, and I've got a friend who is very close to me along with his wife. We are four are very thick friends. She's very thickly friendly with her, and I'm thickly friendly with my friend. And many times we come together, have dinner, stay over, this, that, continues. And suddenly sometimes a situation comes that he and the friend's wife is together, and another lady and that man is out for some work. And mostly I have seen devotees in the hospital come for treatment who are like, they have married to each other's wives, and they are together in the hospital taking treatment, and they are still good friends. This is Western culture. We are not in that culture. At one time they were married to two different women, and because of the close interaction, this lady married with this man and this lady married with that man, officially. But this is very heinous for us, both heen activity hamare liye. But unka culture aisa hai ki it's normal for them. And after 3 years if we go, they will be with some different partners. That is also all dissolved in the course of time. It just, you know, as per the impulse of the mind, I like, I take it, I don't like, I throw it away. That is animal life, not human life.
Also, yeah. If a brahmachari comes at home for prasad, among mother-in-law and father-in-law, if the mother-in-law wants to serve brahmachari, should be consciously tell...
As I told you, keep away. As long as men are there, let the men serve. And take care of the brahmachari who you are called, na? I mean, he is uncomfortable if some lady is coming and forcing him to eat. ये खाओ, ये राजस्थान का है, ये तो आपको नहीं मिलेगा कभी, आप वो हमने बनाया है, हम दाल बाटी कुरकुरमा बनाया है. This is like a very pressurizing for the brahmachari. Is that? That's why generally now I tell you honestly speaking, if there are many women in your house, na, don't call brahmacharis in your house. You make something and send to temple, and if you want to serve them, and don't ever serve a particular brahmachari कि मेरे को ना वो brahmachari को देना है. Don't ever do that. It's very wrong kind of culture that we are getting into.
But if we discuss this with mother-in-law, she may feel, no, I'm a mother figure.
So that's why avoid the situation. If there is, your mother-in-law is very pushy and she's going to pressurize the brahmachari to eat dal bati and this and that, gaon ka hai, vagara. If you know all this already, don't get into the situation. Don't bring a situation and embarrass the brahmachari. He may never come to your house again after that. Yeah, Mataji, go ahead.
प्रभुजी मेरा अलग क्वेश्चन है जॉब के रिगार्डिंग क्वेश्चन है प्रभुजी जैसे कि मान लो हम जॉब पर जाते हैं प्रभुजी ये क्वेश्चन दे रहे बार बार ये मैं पूछती हूँ लेकिन फिर भी मैं गलती हो जाती है मुझसे जैसे हम मैं ये सोच के जाती हूँ कि हम अपनी सुबह साधना अच्छे से कर लें और अब जब हम क्योंकि वहाँ पर अधिकतर एटमोसफेयर ऐसा होता है कि चुगली निंदा ये सब प्रजल अब जैसे मान लो मैं एग्जामिनेशन में हूँ तो हमारे साथ जो बैठे हैं तो मतलब उनका यही टॉपिक रहेगा कि प्रिंसिपल ने ये कहा उसने ये कहा मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं ना बोलूँ लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कामेशा क्रोधेशा रजोगुण तो प्रभु जी मतलब इतना सब कोशिश करने के बावजूद जब वो बोलने लग जाती है तो 5-10 मिनट तक तो मैं चुप रहती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ लेकिन फिर बाद में फिर मुझे पश्चाताप होता है कि ये मैंने ऐसे क्यों किया अगर वो निंदा करेंगे तो मैंने क्यों इसमें भाग लिया तो
आंसर वही है जो आपको पहले मिला हुआ है आंसर बदली नहीं होता है आंसर रिमेन सेम दैट यू हैव टू लर्न टू से नो और कुछ नहीं आंसर उसका आपको पता लग रहा है कि ये गलत है तो आपको नहीं करना चाहिए उसको और अगर नहीं करने की स्ट्रेंथ आपके अंदर नहीं है तो आप साधना अच्छी आओ स्ट्रेंथ स्ट्रांग करो आपकी कुछ व्रत रखो उसके लिए या कुछ ऑस्टेरिटी रखो एक कुछ नियम रखो व्रत रखो जप अच्छा करो प्रार्थना करो भगवान की और कोशिश करते रहो कि आपको रोज वो उस कंडीशन में जाना ही है ना जो जो तो जिसका जॉब ही स्विमिंग टैंक में डूबते हुए लोगों को बचाना है उसको रोज पानी में जाना ही है तो उसको अगर पानी की एलर्जी है सर्दी होती है तो उसको उसका कुछ इलाज करना चाहिए क्योंकि उसको रोज जाना ही है पानी में उसको उससे छुटकारा नहीं है तो अगर आपको उस सिचुएशन में जाना ही है आपको उसके लिए तो शील्ड बनाना ही पड़ेगा जो लोग आतंकवादियों के खिलाफ काम करते हैं ना ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड उनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना ही पड़ता है तो गोली लग के मर जाएंगे वो वैसे स्थिति है ये यस
अगर आप अपने आप को थोड़ा लेट्स से अगर आप लाइट्स ऑफ नहीं करना चाहते हो अपने आप को लिमिटेड रखना चाहते हो तो योर टर्म इज रिजिड सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि वो लोग चाहते हैं टीममेट्स होने चाहिए आप यू शुड बी अ टीम प्लेयर दिस एंड दैट तो आपको एक तरह से थोड़ा सा टाइप कास्ट कर दिया जाता है एंड दैट इफेक्ट्स योर प्रोग्रेस ऑल्सो इन एवरी मैनर सो हाउ टू हैंडल दैट
ये जो कॉर्पोरेट लाइफ जो है इसमें लेडीज आई है इसका बेसिक कारण क्या है बड़ा बहुत बड़ा विषय है आपने एक लेवल पे उसका क्वेश्चन दिया है लेकिन उसके अंदर बहुत गहराई है शुरू कहाँ से हुआ ये क्योंकि लेडीज बहुत एम्बिशियस हो गई है उनको अभी आजकल MBA करना है MD करना है DM करना है उनको LLB करना है उनको बहुत एजुकेशन PhD करना है उनको हर एक चीज़ में आगे बढ़ना है तो मटेरियल वर्ल्ड में जैसे ही आप हाईली एजुकेटेड हो जाते हो आपको पुरुषों के बीच में काम करना ही पड़ता है फिर ये प्रश्न तैयार होते हैं तो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू अभी अगर मैं एक स्टेटमेंट करूंगा कि यहाँ पर कि लड़कियों को ना ज़्यादा पढ़ना ही नहीं चाहिए तो आप बोलेंगे प्रभु जी तो बहुत ही ऐसा आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम टू से लाइक दिस ऐसा लगेगा आपको बड़ा अगर सोचेंगे गहराई से ये सब चीज़ें क्यों हो रही है क्योंकि सारा चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर लेडीज़ काम पर जाती है फिर घर पर ध्यान नहीं दे पाती है फिर बच्चों को देख नहीं पाती है फिर बच्चे लोग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं फिर उनको लव अफेयर हो जाते हैं फिर ड्रग लेने लगते हैं ये सब चीज़ क्यों हो रहा है जैसे ही स्त्री अपने घर के काम छोड़कर बाहर कुछ एम्बिशियस लेके जाती है या फिल्म लाइन की या गाने की या डांस की या किसी और करियर की करने जाती है तो उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है और वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ने पर भी तकलीफ होना नहीं चाहिए आपको फिर अगर आपको वो इतना ध्येय आपका स्ट्रांग है तो या तो आप अपना ध्येय एक बना दो बाकी सब कुछ ऑलरेडी करो डोंट टॉक अबाउट इट कि ऐसा वैसा मैं कैसे करूं मैं रिजिड कहलाती हूं मुझे इसके बारे में बात मत करना या तो एम्बिशन छोड़ देना और अपना आराम से कर लो कर्तव्य करना शांति से और प्रेम से रहना आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट हाँ और मेरी बेटी भी वैसे MA संस्कृत है संगीत विशारद है, वायलिन प्लेयर है वगैरह, बट शी हैज़ नॉट चोजन एनी कॉरपोरेट करियर वे शी हैज़ टू गो एंड वर्क विथ मैन एंड परफॉर्म एंड अचीव टारगेट्स एंड गो अहेड एंड गो अहेड एंड गो अहेड. तो यू कैन बी हाईली एजुकेटेड वुमन बट चूज सच अ वे इंटेलिजेंटली कि यू आर नॉट विथ मेनी मैन, दैट यू डोंट हैव टू वर्क विथ मेनी मैन. बट एज सुन एज यू वर्क विथ मेनी मैन यू विल हैव टू फेस ऑल दोज थिंग्स. You are telling now about achievement and targets, then something else you will talk, and something else you will talk, in medical field something else you will talk. But the basic line of problems are same. Base line of problems will be same, where you have to be with men and you are uncomfortable. Then why you choose such a career in the first place? And you want to be devotee also in the same time, and you want to follow all etiquette also. But you have only chosen all these things. So you will be uncomfortable only, which you have brought yourself the troubles, you know. So we have to make a radical thinking about it. What I want to do in life. Yes.
Hare Krishna Prabhuji.
हाँ.
Situation vice versa भी हो सकती है, जैसे husband तो daily office जाते हैं, घर में father in law हैं, तो हम मतलब अगर उनसे बात कर नहीं करें तो वो फिर नाराज हो जाते हैं कि भाई हमसे कोई बोल नहीं रहा, मुझे isolated कमरे में छोड़ दिया है. एंड उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सुबह से लेकर रात तक घर में रहें.
मैंने आपको उसका ऑलरेडी आंसर दे दिया है.
पति
को
नहीं, पर वो डेली ऑफिस तो जाएंगे ही ना, मुझे रूटीन में बोल.
मैं क्या बोल रहा हूँ, ये समस्या घर के इंचार्ज की समस्या है जिसका परिणाम इन पर हो रहा है. इसलिए वो कह रहा हूँ मैं कि अगर वो इनएविटेबल है तो आपको टॉलरेट करना पड़ेगा उसको.
ऑफिस तो जाएंगे ना.
नहीं, आप
तो
वो नहीं कर रहा हूँ, आपके घर की स्थिति की बात कर रहा हूँ.
तो
वो ऑफिस चले गए, आपके घर में इन लॉज है और आप है वो, और आप ये कुछ मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रही हो. तो उसका बीच का रास्ता आपको निकालना है. अगर वो आपके तरफ से एक कंडीशन फिक्स है कि इसमें बदलने वाला कुछ नहीं है, तो काम पे जाएंगे ही और हमारे घर में और कोई है नहीं, तो फिर आपको वो स्थिति को एक्सेप्ट करना है. उसमें जितना हो सके उतना आपको कोशिश करनी है. आपको एक लक्ष्य बता दिया है, उसका मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति उस लक्ष्य के बाद अभी कल पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता ना. कोई फर्स्ट लेवल पे है तो उसको 15वें लेवल पे जाने के लिए तो टाइम लगेगा, कोई 13वें लेवल पे है तो तुरंत जाएगा. तो यहाँ पर हम लोग एक स्पेसिफिक कंडीशन की हर टाइम आंसर नहीं दे सकते कि भाई आपके घर पर फिर ये स्थिति है तो उसको अलग से बैठ कर पर्सनली बात करनी पड़ेगी. सभा में बैठ के उसका स्पेसिफिक आंसर दे सकते नहीं है. कुछ होते हैं जनरलाइज गाइडलाइंस जो यहाँ दे सकते हैं, कुछ है स्पेसिफिक गाइडलाइंस तो अलग बैठ के उसको डिस्कस करना पड़ेगा. इंडिविजुअलिस्टिक, हम लोग भी सभा में बैठे हैं तो हम लोग सभा में केवल जनरल गाइडलाइन दे रहे हैं. जहाँ तक वो जनरल गाइडलाइन आपको फॉलो करने को मुमकिन है वहाँ तक आप फॉलो कीजिए, उसके आगे अपने काउंसलर से जाकर बैठिए और डिस्कस कीजिए उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, बीच का रास्ता निकाल सकते हैं. लेकिन जनरल गाइडलाइन सबके लिए है, यहाँ पर स्त्री पुरुष जवान बुढ़ा सब लोग जितने बैठे हैं उन सबके लिए जनरल गाइडलाइंस है. आई इज दैट क्लियर? आई थिंक दैट इज द वर्ड.
ये क्या है ना, ये प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल जो प्रभुपाद जी ने हमको दिए हैं, ये बेसिक प्रिंसिपल जो प्रभुपाद जी ने हमको दिए हैं उसको पकड़ के हम जितना एज फार एज पॉसिबल जितना फॉलो कर सकते हैं उतना करना चाहिए, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है ना. यू कांट फिट इन टू द प्रिंसिपल और द जनरल स्टेटमेंट एवरी टाइम. तो थोड़ा हमको उसको ध्यान में रख के जितना फॉलो कर सकते हैं उतना करना चाहिए.
बेसिकली अगर आपको ये बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल अबाउट स्त्री एंड पुरुष, अगर आपको ये समझ में आया तो बाकी का समझ में आपको मुश्किल नहीं आया, मुश्किल नहीं होगी. अगर आपको उस पर ही इतनी श्रद्धा नहीं है उस बात पर, तो आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे मन में. इफ यू बेसिकली सपोज बेसिकली यू आर यंग गर्ल, सपोज शी डजंट फील इट्स एनीथिंग रॉन्ग विद बीइंग विद मैन एंड वर्किंग, सो देन व्हाटएवर आई स्पीक इज एब्सर्ड टू दैट पर्सन. बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल एंड रिस्पेक्ट दैट प्रिंसिपल, देन इट विल बी स्टार्टिंग टू बिकम रेलेवेंट टू यू व्हाट वी आर स्पीकिंग. सो जैसे पीएचडी का नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको पहले एमएससी होना चाहिए. फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को पीएचडी का नॉलेज आप बता नहीं सकते, वो समझेगा नहीं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. उसी तरह से ये जो वैष्णव प्रिंसिपल्स है ये एक प्रगत मनुष्य के लिए बताए गए प्रिंसिपल्स हैं. अगर वो मनुष्य या अगर वो स्त्री उस प्रगत स्तर पर नहीं है या प्रगत स्तर पर उसको जाने की इच्छा भी नहीं है तो उसके लिए सब बेकार की बातें हैं। दीज आर द गाइडलाइंस फॉर प्रोग्रेसिव पीपल हु आर इन भक्ति। इसको आर्य कहते हैं हमारे वैदिक भाषा में। आर्य लोग उनको कहते हैं जो हु आर फॉलोइंग द प्रोग्रेसिव वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ टुवर्ड्स भक्ति, उनके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम उस स्तर पर नहीं हैं तो ये सब हमारे लिए बिल्कुल बेकार बातें हैं। तो हम लोगों को ये तय करना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में। यस
प्रभु जी, अगर एंड ऑफ द लाइफ सिचुएशन है और डिवोटी एल्डरली है तो उनका जो साफ सफाई वगैरह के लिए तो मदर इन लॉ है, तो उस पोजीशन में हमें आगे सन को लेना चाहिए या डॉटर इन लॉ जो फीमेल है तो डॉटर इन लॉ को
कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। शरीर की सेवा है तो डॉक्टर ले को आना चाहिए। शरीर की सेवा है, फिजिकल सर्विस है, चेंज करने कपड़े, वॉश देना है, मॉप देना है, तो नेचुरली लेडीज को जाना है। जिम्मेदारी लड़के की होनी चाहिए। और अगर ये अगर सिचुएशन ऐसी है घर पे, समझो फादर इन लॉ बेड पे है, अगर मैं डॉटर इन लॉ है तो पति को फिर किसी की मेल असिस्टेंट की व्यवस्था करनी चाहिए। दिस इज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल गाइडलाइन, दिस इज कॉमन सेंस। जैसे हमारे हॉस्पिस सेवा में जब डेथ केयर होता है तो हम तुरंत बोलते हैं पेशेंट को कि इसके लिए असिस्टेंट लगा दो, तुरंत 24 आवर्स इसको गाइडलाइन वॉट एवर वॉच होना चाहिए इसके ऊपर। कभी भी गिरेगा आदमी, सर पे इंजरी होगी तो इनको 24 आवर्स सुरक्षित रूप में रखने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, तो 12 घंटे का दो व्यक्ति होना चाहिए। वो हमारा फर्स्ट गाइडलाइन होता है। इसमें कुछ स्पिरिचुअल कुछ नहीं है, इस जस्ट कॉमन सेंस मेडिकल अंडरस्टैंडिंग। तो वैसे ही अगर आपके घर में
कोई भी दे सकते
हैं, हाँ स्पिरिचुअल केयर तो दे सकते हैं, बोलने में बैठ के कुछ दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हो बैठ के, बट ऑपोजिट सेक्स के आदमी के साथ फिजिकल सेक्स करने को कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। माइक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा माता जी ने। सब लोग इसका उत्तर सुनने की तैयारी में हैं। लाइट गई है, पसीने आ रहे हैं और इतना हैवी टॉपिक पे अभी डाइजेस्ट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। मैं इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन आइडियल बात तो ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। जैसे ही आपके बच्चे जवान तो छोड़ ही दो, समझदार होने लगते हैं, समझने लगते हैं, तब से आपको उनके सामने बहुत ही केयरफुली रहना चाहिए। खास करके अगर पति पत्नी जवान हैं, उनके अंदर में अभी भी एक्टिविटीज़ उस प्रकार की चल रही हैं, लेकिन उस विषय में उनको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का गलत एक्टिविटी का दर्शन उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उनको एक गलत कल्चर दे रहे हो उसकी वजह से। कई भाई क्रिश्चियन लोगों के घर में कैसा होता है, बच्चों के सामने ही माँ बाप गले लगते रहते हैं, हाँ कुछ ऐसे फ्री एक्टिविटी करते रहते हैं जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में करते हैं। तो उनको आप एक संस्कार दे रहे हो कि हमको भी ऐसे ही करना है जब बड़े जाएंगे हम लोग। दिस इज हाउ वी आर डूइंग। और अगर आपके बच्चों को आपको आध्यात्मिक कल्चर देना है, अगर आप भक्त हो स्वयं और आपको कन्विक्शन है मन में कि आपको उन्हें आध्यात्मिक कल्चर देना है, तो आपको अपने आप को रुकना ही चाहिए इन सब गतिविधियों से। और बच्चों के सामने कभी भी ऐसे क्वेश्चन मार्क वाली एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, भले वो रात में हो या दिन में हो और कभी भी हो। अपने बढ़ते हुए उम्र वाले बच्चों के सामने उनके मन में संदेह उत्पन्न हो, प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो, डाउट उत्पन्न हो, डिसरिस्पेक्ट उत्पन्न हो माता पिता के बारे में, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बालक को जन्म देना बहुत आसान होता है, वेरी इजी, एक्सट्रीमली इजी, लेकिन बालक को सही परवरिश देना बहुत मुश्किल होता है। और बालक को जन्म देने की एक्टिविटी कुछ समय की होती है और परवरिश की एक्टिविटी बहुत साल चलती है, समटाइम्स 25 ईयर चलती है। जन्म देने की एक्टिविटी बहुत कुछ दिनों की हो सकती है, लेकिन परवरिश वाली एक्टिविटी जब तक वो विवाह करके नहीं जाएगी या जाएगा तब तक आपकी परवरिश वाली एक्टिविटी चलती रहती है। और हर चीज़ जो अपने माँ बाप ने की है वही बच्चा रिपीट करता है आगे, क्योंकि उसने वही देखा है, उसने और कुछ देखा नहीं, और उसको वही उसको लगता है कि यही सही है। जैसे मैं बोलता हूँ, उदाहरण देता हूँ, हमारे बिल्डिंग में एक घर में एक व्यक्ति आता था और वो रोज़ उस घर में आकर बड़े स्टाइल से एक गोल्डन लाइटर निकालता था और ब्रिस्टॉल सिगरेट निकालता था और ब्रिस्टॉल सिगरेट को जलाता था ऐसे प्रेम से एकदम सा स्टाइल में। और मैं उसको मैं भी हर रोज़ देखा करता था उसको कि उसके जेब में एक गोल्डन लाइटर हुआ करता था और बड़े स्टाइल से दूसरी जेब में से सिगरेट निकालता था ब्रिस्टॉल और निकाल के बड़े ढंग से उसको जलाता था। तो मैंने एक समय पर मन में ठान लिया था जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो ब्रिस्टॉल सिगरेट पीऊँगा। इतना फिट हो गया था मेरे मन में। आज मैं देख रहा हूँ कैसा, मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मैं उसको रोज़ देख रहा हूँ उस व्यक्ति को, तो रोज़ मेरे मन में एक एक हिट हो रही, हिट 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 हिट, उस हिट के बारे में उसका फिर मैंने एक निर्णय ले लिया कि मैं भी ऐसे करूँगा। उसी तरह से बालक जो रोज़ देखता है, सबसे अधिक इसको देखता है वो माता पिता को देखता है, उसके बाद में अंकल को देखता है, उसके बाद में नानी को देखता है, सबसे ज़्यादा माता पिता को देखता है। जो माता पिता जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, या प्रेम करते हैं, या और कोई गलत एक्टिविटी करते हैं, या झूठ बोलते हैं, फॉर एग्जांपल, वो सारा आप उनको वन टू वन डायरेक्ट संस्कार दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे को आज बुखार नहीं आया है, आपको उसको किसी की शादी में लेके जाना है और आप उसके सामने डायरी में लिख रहे हो कि डियर टीचर, टुडे आई हैव गॉट फीवर, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल, आई विल कम टुमारो। तो बच्चों को क्या संस्कार मिला, मुझे बुखार नहीं आया है लेकिन मुझे विवाह में जाना है, तो ऐसा झूठ लेटर हम लिख सकते हैं। दिस इज राइट, दिस इज ऑल राइट, आपने एक अच्छा संस्कार दिया ना उसको। तो ये जाने अनजाने में आप कितने संस्कार गलत दे रहे हो उनको, झूठ बोलने का दे रहे हो। वो अभी फॉर एग्जांपल फ़ोन आता है तो पिताजी कहते हैं माताजी को, मतलब मम्मी को कहते हैं, उनको बोलना मैं घर पर नहीं हूँ, और साथ में बेटा ब्रेकफास्ट आपके हाथ में ले रहा है, पापा भी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। तो यू कम टू अ कल्चर दैट जब भी हमको किसी से बात नहीं करनी तो बोलना कि घर पर नहीं है। ये सारा संस्कार जो है अनजाने में आप लोग बच्चों को दे रहे हैं, इसलिए बच्चों के सामने आप क्या करते हो आपको बड़े सावधानी से रहना चाहिए, कैसे बात कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मतलब ये सुन रहे हैं, हमारे रघुनाथ प्रभु हैं जो अभी अमृतसर में रहते हैं, हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर रह चुके हैं कई साल, तो वो उनके घर में हम लोग एक बार ऐसे शाम को डिनर को गए थे ऑल डॉक्टर्स मिलकर, तो अचानक बीच में डिनर में स्टार्टर शुरू हुआ तो उनका फ़ोन आया अमृतसर से, और मैं ये एग्जांपल कई जगह पर दे चुका हूँ, तो वो जय गए माँ का फ़ोन लेने के लिए अमृतसर से, और बड़े देर तक फ़ोन चला उनका, और वो फ़ोन में बहुत रो रहे थे माँ से बात करते हुए। ऐसे कुछ घटना नहीं हुई थी लेकिन एक माँ का फ़ोन आया अमृतसर से, इसी भाव से वो माँ भी रोई है फ़ोन पर, ये भी यहाँ पर रो रहे हैं, बहुत देर तक चला उनका, फिर फ़ोन रखा, आँख पोछते पोछते आ गए, तो हम बड़े भावुक हो गए इस बारे में। तो उनको पूछा, प्रभु जी क्या हुआ, मतलब कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि जब मैं मेरी माँ के साथ फ़ोन बात करते हुए आंसू बहाता हूँ तब आगे जाके मेरे बच्चे मुझे फ़ोन करेंगे दूर से तो वो भी रोएंगे प्रेम की वजह से। आपने उनको एक अच्छा कल्चर ऑलरेडी दे दिया है कि जब भी मेरे पापा मेरे दादी से फ़ोन करते हैं तो दोनों रोते हैं फ़ोन पे प्रेम की वजह से। इतना प्रेम होना चाहिए माँ और बेटे के बीच में। तो वो जब बच्चा देख रहा है, छोटा बच्चा है वो 10 साल का है, अभी देख रहा है पापा रो रहे हैं, तो उनको भी लगेगा कि मेरी मम्मी को जब मैं फ़ोन करूँगा इंग्लैंड से तो मैं रोऊँगा और मेरी मम्मी भी रोएगी। और या तो अमृतसर से फ़ोन समझो आया और पापा यहाँ पर मम्मी को गाली दे रहे हैं, तू तो बेकारी है, तू तो ऐसी ही है, मम्मी भी उनको गाली दे रही है, बच्चा सुन रहा है, बोला हाँ जब भी मम्मी बुढ़ी हो जाती है तो मम्मी से गाली देनी चाहिए, क्योंकि वो सुनती नहीं है, तो पापा को फिर गाली देनी पड़ती है। तो सही बात है, आप एक कल्चर दे रहे हैं उनको, उनके लिए अच्छा बुरा का माँ कुछ नहीं होता है, उनके लिए आदर्श माँ बाप होते हैं और उनको पता भी नहीं कि आदर्श है, बट फिर भी उनका जो क्रिएट किया हुआ कल्चर है वो उनके आत्मा पर बार बार परिणाम करते रहते हैं।
Regarding cooking for Maharaj, you said only initiated devotees should cook.
Ideally speaking.
Suppose there's a situation where like you're helping in the kitchen, you're not initiated, and you're helping in the kitchen cooking for Maharaj. But sometimes situation arises that Maharaj has come and you're asked to put food on fire. So in that situation, should we refuse?
Again, I have given you a general guideline. A specific situation can that time be discussed. What is the situation that time? So that's why I'm saying that it's a specific situation. If I say yes, yes, you should do it, it becomes general guideline. If I say don't do it, then it becomes general guideline. So I would say at this moment I will not prefer to answer this question, but a specific situation is having specific answers. See, apat dharma hota na, apat dharma, usko usse keh rahi hai, time, place, circumstances. Desh kal patra ko dekhkar, kabhi-kabhi stapit niyamon ko bhi todkar kuch kaam karte. Jaise Govind ne, jab Chaitanya Mahaprabhu ke seva karne ke liye unke sharir ko laang kar wo chale gaye. Govind jo the na, Govind bhakt the, Bhagwan ke Chaitanya Mahaprabhu ke. To Bhagwan ko bhojan ke baad charan dabane ki seva thi unki. Bhagwan room ke darwaje pe so gaye the. तो बहुत देर सोचा उन्होंने, सेवा तो करनी है, तो उनके शरीर को लांग के गए, भगवान के शरीर को लांग के गए और चरणों का सेवा किया. वो सेवा हो गया तो बैठे रहे वहाँ पर. 3 घंटा के बाद में महाप्रभु चरण जाग गए, बोले गोविंद तुमने भोजन नहीं किया. बोले नहीं, कैसे आपको लांग के जाऊँगा मैं. तो बोले मैं जो लांग कर तो आए थे चरण दबाने के लिए, तो भोजन करने के लिए चरण दबा के क्यों नहीं गए, लांग कर क्यों नहीं गए. बोले चरण दबाने की आपकी सेवा थी, आपके लिए मैंने आपका शरीर लांग कर गया, लेकिन भोजन करना ये मेरे लिए मेरा स्वार्थ था, तो मेरे स्वार्थ के लिए मैं नियम नहीं तोड़ सकता, आपकी सेवा के लिए तोड़ा मैंने, ऐसा है वो. ये तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, मतलब स्पेसिफिक. तो उस तरह से उस समय क्या स्थिति है, अगर इमरजेंसी है तो आंसर इज येस डू इट. अगर उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव है तो आंसर इज नो. बट ऑलवेज सी वॉट इज द बेस्ट यू कैन डू इन द गिवन सिचुएशन. It may not be best of best always, but in the given situation, क्या best है वो आप करना चाहिए.
जैसे corporate world में situation को थोड़ा सा बताया कि किस तरह से कठिनाई होती है, ऐसे ही बच्चों के इस बच्चे जो हैं, जैसे school going जो हैं, हम लोग जैसे तिलक लगा के जाते हैं या हाथ में जपमाला होती है तो हमें वो लोग मना करते हैं. तो
क्या करते हैं,
मतलब बच्चे जो है उनको वो उनको जो है अपवर्ड फील होता है, वो कहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स के सामने अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, यू नो. तो उस सिचुएशंस के अंदर हमें कैसा डील करना चाहिए, क्या करना
चाहिए. सबसे पहली बात इस क्वेश्चन के आंसर करने के पहले, सबसे प्राइमरी थिंग ये है, सब लोग सुन लीजिए, जिसको छोटे छोटे बच्चे हैं सब लोग सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए. आपको अपने घर में बहुत ही स्ट्रांग और एग्जेम्पलरी उदाहरणीय कृष्ण कॉन्शियस वातावरण खड़ा करना है. सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे जो डिवोटी आप बने हो, आप टीवी देख रहे हो, तो आपका वातावरण स्ट्रांग नहीं है, और टीवी में बहुत सारी दुनिया की चीज़ें देखनी पड़ती है, कपड़े की एडवर्टाइज भी होती है, टीवी की भी होती है, मोबाइल की होती है, 50 चीज़ों की लाइफस्टाइल की होती है, खाने पीने की चीज़ की एडवर्टाइज होती है. तो उस स्थिति में अगर आप बोल रहे हो कि मेरे बेटे बोल रहे हैं कि हमारे साथ में बीड बैग लेके थोड़ा इस तरफ ना, हमारे साथ में बीड बैग लेके मत चलना, इसका कारण यह है सॉरी टू से कि घर का वातावरण डाइल्यूट है कृष्ण कॉन्शियसनेस का. अगर आपका घर का वातावरण बचपन जब से जन्म हुआ है तब से आप कृष्ण कॉन्शियस हो, आपकी पत्नी कृष्ण कॉन्शियस है, आपका घर का कल्चर बहुत स्ट्रांग कृष्ण कॉन्शियस है, तो आपके बच्चे आपको कभी भी नहीं बोलेंगे ऐसा. बट हो सकता है कि आपके गृहस्थ होने के बाद में, काफ़ी समय के बाद में, बच्चे होने के बाद में फिर आप कृष्णा कॉन्शियस बनने आरंभ किए हैं, कुछ समय ऑलरेडी बीत गया है, उसके बाद में आपने फिर ट्रेनिंग देना शुरू किया है, समझो, तो आपको ये समस्या आ सकती है. कल भी मैं माताजी से बात कर रहा था इस विषय में, तो जब थोड़ा सा प्लीज़ कैन यू टेक केयर ऑफ दैट प्लीज. तो इस स्थिति में आप बच्चों के साथ ज़्यादा बहस मत कीजिए. अगर वो कह रहे हैं तो रिस्पेक्ट देयर वर्ड एंड डोंट कैरी अ बीड बैग, कैप की भी दुनिया बैग. क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जैसे आप बालक आपको बोल रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं जाना चाहिए, उनको बहुत संकोच होता है, आप ऐसे जाते हो तो वी फील वेरी एम्बेरेस्ड. अगर आप बोले नहीं मैं डिवोटी हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा, तो आपका और उनका दरार जो है बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन यू और योर चिल्ड्रेन. और वो आगे जाके फिर आपकी हर बात जो आपको उनको बतानी है वो डालते जाएंगे, उसका विद्रोह करते जाएंगे, रेबेलियस होते जाएंगे, और आपको जो उनसे हासिल करना था वो आप हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उनकी बात डाल दिया, वो आपकी 100 बार डालेंगे, आपने 1 बार डालने पर, वो उनका बच्चों का स्वभाव होता है, 1-to-1 नहीं करेंगे, 1-to-100 करेंगे, वो एक बात को ध्यान रखते आपकी आगे की 100 बातें डालेंगे वो जानबूझ के पर्पजली। इसलिए अगर आप समझो किसी एक फंक्शन में अगर फीडबैक लेके नहीं गए तो आई डोंट थिंक यू विल फॉल डाउन फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। आपका अगर भजन आपने अच्छी तरह कर दिया है तो आपको हर जगह अगर वो बोल रहे हैं आपको पापा इस फंक्शन में मत आना कम से कम, तो रिस्पेक्ट देयर स्टेटमेंट। प्रभु जी क्या है ना, आजकल हम लोग भी इस स्थिति में जा रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ में, आज की स्थिति जो ऐसी है ना बहुत डिग्रेडेड स्थिति हमारी ऑलरेडी है, मतलब वर्ल्ड ही ऐसा है, ऐसा नहीं कि हम और आप डिग्रेडेड हैं, बट हम जिस स्थिति में कृष्णा कॉन्शियस प्रगति करना चाहते हैं वो स्थिति इतनी गिर चुकी है कि उसमें हमारा संघर्ष बहुत बढ़ गया है। ये एबनॉर्मल चीज़ें हमारे सामने प्रश्न के रूप में आ रही है, अभी क्या करें, बच्चों को संकोच हो रहा है, बच्चों को वैसे कपड़े पहन के जाना है, हमको संकोच हो रहा है उनके साथ जाने में, ऐसे दोनों तरफ है ना प्रभु जी। आपकी लड़की अगर टाइट ड्रेस पहन के बाल छोड़ के जा रही है तो आपको संकोच हो रहा है, क्योंकि लोग आपको पूछेंगे, सोचेंगे अरे ये इनकी बेटी है, देखो कैसे कपड़े पहने हैं, ये आपका संकोच है। और आप धोती कुर्ता और बीडबैग लेके जा रहे हो तो उनको ले, अरे बाप रे ये मेरे पिताजी है, मेरी माता जी। स्थिति ऐसी है, ये कलयुग ने आपके सामने रखी हुई है, इसमें आप एक ही काम कर सकते हैं, जितना हो सके उतना कृष्ण कॉन्शियस रहो, जितना हो सके उतना फॉलो करो, भगवान से प्रार्थना करो असहाय होकर के हमको बचाओ, हमको इस स्थिति में से आपके पास पहुंचना है, यू गाइड अस प्लीज। बट एक बार आप अगर समझो आपकी बेटियां बेटे जवान होने के बाद में आप भक्ति में आ रहे हो तो आप बहुत सारे बाजी आपके आगे ही पीछे हो चुके हैं, आप ऑलरेडी ग्रस्त में प्रोग्रेस हो चुके हो ना, तो फिर उस स्थिति में आप उस आइडियल चीज में बैठोगे ना ऐसे, तो फिर आपके घर में केवल युद्ध ही युद्ध होना है और कुछ नहीं होना है। प्रेम ही एक ही तरीका है, ओनली लव, देयर इज नो अदर तरीका। सच्चा हृदय का प्रेम जो है यही तरीका है उसके ऊपर, तो उसको रिस्पेक्ट करो आप। अगर वो आपकी बातें घर में मान रहे हैं तो आपको 100% उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनकी बातों को, कुछ यू गिव इन टू देम, कुछ दे गिव इन टू यू, एंड विन विन करके आपको आगे बढ़ना है, ना आपको जिद में रहना है ना उनको जिद में रहना है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं, वो बच्चे हैं, तो कम से कम आप अपने समझदारी से काम करो उनके साथ में तो अच्छा रहेगा।
जैसे प्रभु जी ने कहा कि यू हैव स्टार्टेड योर कृष्णा कॉन्शियसनेस लेटर, मतलब
नॉट इन द बिगिनिंग
ऑफ, हाँ, पर ऐसे जरूरी नहीं है, आजकल का जमाना भी बदल गया है, एंड मतलब उनके ऊपर भी अभी ये कलयुग का प्रभाव हो रहा है। इवन दो चिल्ड्रन बॉर्न इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो स्टिल दिस इज पॉसिबल, ऐसा होना पॉसिबल है, वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट दैट सिचुएशन, यू कांट हेल्प इट, बिकॉज
मतलब उसके मन में है सब कुछ।
हाँ समझ गए, समझ गए, समझ गए,
समझाने की कोशिश करती है, सब करती है, बट एक्सप्रेस नहीं करना चाहती है,
रिस्पेक्ट हर फीलिंग्स,
कि जैसे वैसे लगा है या बीट पे,
ठीक है,
दैट इज अ पॉइंट एक्चुअली, वैसे अपने फ्रेंड्स को भी समझाती है, बुक्स वगैरह पढ़ती है, सब करती है, तो ठीक है, दैट इज अ गुड पार्ट।
इन्होंने एक बात छेड़ी है, उसके बारे में बोलना चाहूंगा मैं, कि अगर आपके बच्चे आप कृष्णा कॉन्शियस दीक्षा लेने के बाद में शादी होने के बाद पैदा हो गए समझो, फिर भी आजकल के बच्चे कहते हैं कि हमको माता पिता ने बहुत स्ट्रिक्टली एकदम दबा के रखा था, तो बहुत दबा के रखा, और जैसे ही हमारी शादी हो जाएगी तो हम लोग कुछ भी फॉलो नहीं करने वाले इसमें से, ऐसे भी स्थितियां हैं, ऐसे भी स्थितियां हैं, बिकॉज जमाना बदल गया अभी, हमारे टाइम में जिस तरह से हमको बड़ा किया गया वो स्थिति बड़ा टोटल डिफरेंट थी, और क्या है ना, हम लोग और गलती करते रहते हैं, मैं भी करता था, मेरी पत्नी में समझाती थी हमेशा कि हमारे समय हम लोग कैसे थे, कैसे पापा का रिस्पेक्ट करते थे, कैसी बातों को मानते थे, कैसे हमारी हिम्मत नहीं थी कभी उल्टा बोलने की, ऐसे हम लोग बार बार दोहराते रहते हैं, उनको और गुस्सा आता है उसके ऊपर कि वाई आर यू पुशिंग योर आइडियोलॉजी ऑन अस, किया होगा आपने ऐसे, हम लोग नहीं करना चाहते, आप कितने महान बालक थे जब बालक के रूप में थे, ये सुनकर भी उनको गुस्सा आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलेंगे वो देखो वो कितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं, देखो 15 घंटा पढ़ाई करते हैं, तुम देखो देखो, दे डोंट लाइक द कंपैरिजन, उनको तुरंत गुस्सा आता है और फिर वो उस लड़के का द्वेष करना शुरू करते हैं, वो करते हैं कि नहीं करते, तो वो भी नहीं कभी करना चाहिए। देखो वो लड़का कितना अच्छा है, देखो वो लड़की कितना 8वीं में से घर में से रोटी बनाना शुरू कर दिया है, तुम तो 12th में गई अब तक उनको रोटी बेलना नहीं आता है, वो देखो कितनी अच्छी लड़की है, वो पिताजी कितना ख्याल रखती है, मम्मी बीमार थी तो खाना बनाती थी। जैसे ही आप ऐसा बोलना चालू करोगे वो लड़की का उनका दुश्मनी शुरू हो जाता है, बिकॉज देयर टुडेज चिल्ड्रेन यू कैनॉट एक्सपेक्ट ऑल आइडियल बिहेवियर फ्रॉम देम, यू हैव टू बी ओनली इंटेलिजेंट इन द गिवन सिचुएशंस हाउ यू कैन एनकरेज देम। एंड उसका उत्तर मैंने पहले भी दिया है, लव इज द ओनली जेन्युइन लव। आई नॉट टेक नेम, आई नो अ वेरी सीनियर डिवोटी हु इज अ वेरी he came in 1980s actually, his wife was not a devotee and he was initiated, Brahmin initiated devotee, and his wife would do disco dance at home, she had system and she would alone dance at home, aisa culture tha unka, but over 15 years of perseverance and patience and loving he made her into devotee afterwards, and today she is a Brahmin initiated devotee. She has full size deities at home and center of Krishna consciousness in their house. But he was very patient, he was never critical, was never poking, he was never insulting. He was very patient and very loving, genuine love. And very lovingly he cultivated her for a long time, and one day she became devotee. Now she loves Gurudev so much. She is so highly Krishna conscious. You cannot even believe ki the same lady which I saw 25 years ago is the same lady, but he was very intelligent. In fact, it is easier for a husband to make a non-devotee wife into a devotee wife. Vice versa is difficult. But still he did not use his husband power, he used his only love power. And that has helped her to become a very nice devotee. She doesn't have any regrets about it. My husband forced me, my husband really, you know, pressurized me, I have to become devotee. Aisa nahi. He gave her time to get inspired on her own and become devotee. No criticism. Yes, Prabhuji. Haan, dijiye. Sabko mauka dijiye.
I have a question related to all this topic. Hare Krishna. What should be the duty?
Hindi. Hindi.
My question English or Bhojana? What should be the unchanging and constant duty of an idle grihastha at falling stages of their life? Like newly married, married with no kids, and married having small kids, and teenage kids, and grown up kids, and one treated his duties.
You are asking me to write a book. General guidelines. General guidelines is, one should chant 16 rounds every day, just before marriage, on the day of marriage, just after marriage also, every single day, unchanging, constant. You ask, no? So 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra, no compromise with principles. If shadi ho gayi to bahar ke bhelpuri khayenge, na afford, wo sab nahi hona chahiye. Idea na, again, you don't point out to me, kare, Prabhuji, to kya abhi? एक भी भेलपुरी खाने को भी देते नहीं ऐसा नहीं है क्वेश्चन तो आज के मी आइडियल आई एम गिविंग आइडियल जनरल गाइडलाइंस टू यू एंड दैट कमिटमेंट टू द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मस्ट बी देयर इन द अनमैरिड लाइफ और इन मैरिड लाइफ और इन प्रेगनेंसी लाइफ और अर्ली चाइल्ड लाइफ दैट एफर्ट हैज टू बी देयर टू रीच द आइडियल जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी Shikha Mataji has a just a baby, just 25 days old baby. There's so many new, unforeseen, unexpected situations are there, you know, which you must be experienced about it, but for her it's like totally bewildering. If there are some difficulties, I'm not going to be harsh with stick. Didn't I tell you before getting married that on the day after delivering child you should do these things? Have you all forgotten? Okay, I abandon you. No, you have to be sympathetic, you have to be kind, compassionate, and help her to do what is ideal. Maybe I'm difficult to do the ideal thing. They want to do ideal thing. बट इट इज डिफिकल्टी नाउ. हाँ अभी वो अगर वो हाँ तो एक सिचुएशन आपके सामने है वन टू वन की, कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको आइडियल फॉलो करने के लिए, तो उनको उनको कंपैशनेटली करुणा के साथ में गाइड करके एनकरेज करना चाहिए, कंडेम नहीं करना चाहिए. क्या आपको बोला था मैंने, आप बिल्कुल ही फेल हो गए उसके अंदर. तो फिर वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, छोड़ ही देंगे उसको फिर वो, नहीं होता हमसे ये, इतना हाई डिमांड हमसे नहीं होता है. और जैसे इन्होंने पूछा था जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमको कैसे करना चाहिए, तो बहुत सावधानी से आपको रहना है. एक स्ट्रॉन्ग कल्चर जो है ना घर में पैदा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके घर में अगर एकदम बहुत स्ट्रांग कृष्णा कॉन्शियस कल्चर है, लविंग एटमोसफियर है. वो लविंग एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रांग कल्चर का, कि आपके घर के जो निवासी हैं, जो आप हैं और आपके बच्चे हैं, वो सब कृष्णा कॉन्शियस एंजॉय कर रहे हैं. उनके ऊपर ऐसा क्या कहते हैं उसको, आतंक नहीं उनके ऊपर हरे कृष्ण का. एक होता है ना हरे कृष्ण आतंक, जो खास करके पिताजी लोग करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, हरे कृष्ण आतंक, एकदम ऐसा ही होना है, बस ये नहीं करना है. तो फिर वो बच्चे खाली वेट करते हैं कि पापा आप पर डिपेंड है ना, थोड़ा ठीक है अभी, एक बार मुझे पढ़ाई करने दो, इसमें से एक बात भी फॉलो नहीं करने वाला हूँ. दिस इज मन में दबा हुआ है विद्रोह, वो अभी शायद आपका जोर की वजह से नहीं वो प्रकट हो रहा है वो. तो महाराज ने भी गाइडलाइन दिया था एक बार कि गोपाल गार्डन में विद्यालय शुरू कर रहा हूँ, उसका एक ही टॉप मोस्ट गाइडलाइन है, एक लाइन में कहा जाए तो, लेट अवर चिल्ड्रन बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द स्कूल, नॉट फोर्स्ड टू फॉलो कृष्णा कॉन्शियसनेस. और अक्सर हम लोग ये करते हैं, फोर्स फोर्स एंड फोर्स, वी फेल टू क्रिएट. हम लोग प्रेरणादायी वातावरण घर में, लविंग एटमोसफेयर करना फेल हो जाते हैं हम लोग, उसके बाद फोर्स का अस्त्र उठाते हैं और फोर्सफुली सब कुछ करना चाहते हैं बच्चों के बारे में. बट दैट इज नॉट करेक्ट. आपको उसका परिणाम बाद में दिखेगा, जरूर दिखेगा, 100% दिखेगा. जब तक आपके घर में कृष्ण कॉन्शियसनेस का एटमोसफियर एकदम प्लीजिंग एंड लविंग ना हो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, कि आपने बचपन कृष्ण कॉन्शियसनेस माँ बाप के साथ में बड़ी खुशी से गुजारा, तो आप जिंदगी भर कृष्ण कॉन्शियस रहना चाहते हो, अपने बच्चों को भी देना चाहते हो. लेकिन आपके बचपन में एकदम फोर्सफुली एकदम स्ट्रांग डांट के साथ आपको कृष्ण कॉन्शियस बनाया गया, तो आपके बच्चे जैसे शादी हो गई तो छोड़ देंगे सब कुछ, जो आपने कहा था सब तोड़ते हुए नजर आएंगे, आप भी हेल्पलेस रहेंगे. तभी शादी कर दी तो क्या करेंगे आप उसके बाद में, पति बोल रहे ये करो ये पहनो ये खाओ ये पियो, इधर खाना खाएंगे उधर खाएंगे, आपने हमने तो कभी आपको कल्चर नहीं दिया था ऐसे, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं. क्योंकि जो जो उनको पसंद नहीं आया था वो सब कुछ करेंगे उसके बाद में. वो ऐसा नहीं कि जब नहीं करेंगे, जब भी करेंगे, दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उनको कृष्णा कॉन्शियस बनना नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस बनना है उनको, रहना है, लेकिन वो अपने ढंग से रहेंगे अभी जैसे उनको रहना है. ये हकीकत है. तब हमको समझ में आएगा हाँ शायद मैंने ये चीज़ फोर्स से लाद दी थी उनके ऊपर, और ये चीज़ खुशी से उन्होंने स्वीकार किया था. ये हमको भी दिखाई पड़ता है, दिस हाउ क्लियर पिक्चर इज देयर. हमारे लिए भी लेसन है ये कि हाँ हमने यहाँ पर गलतियाँ की, हमने इतना इंस्पायरिंग लविंग एटमॉस्फेयर घर पर नहीं किया था, तो हो सकता है उसकी वजह से ये चीज़ अभी फॉलो नहीं हो रही है और ये चीज़ फॉलो हो रही है. आपका सब प्रश्न का उत्तर इसमें देना मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या क्या बताया आपने, शादी के पहले शादी के बाद इसमें एक और एक जनरल गाइडलाइन देना चाहूँगा मैं, जैसे कल भी मैं आपके घर में वो चर्चा कर रहा था, कि कृष्णा कॉन्शियसनेस आपके हृदय में जहाँ तक अच्छी लेवल में है तो उसका कृष्णा कॉन्शियस परिणाम आपके आसपास के लोगों पर होता रहेगा, बच्चे हो या जो भी आपके पत्नी है, पत्नी के लिए पति है, पति के लिए पत्नी है. ये क्लोज वातावरण के अंदर कृष्णा कॉन्शियस जेन्युइन जो है वही परिणाम सब पर होता रहेगा. साथ में अगर दुख है, अगर कोई चिंता है, कोई एंग्जाइटी है, तो वो भी उसका परिणाम भी होते रहेगा. तो अगर आप गृहस्थ हो और परिवार के मालिक हो, मतलब इंचार्ज हो, चीफ हो, तो आपको हर स्तर पर आपके लिए चैलेंज है कि आप हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में खुश रहें और एक लविंग एटमॉस्फेयर घर पैदा करें, जिससे ये सारी स्थितियों में आपको उसका इच्छित परिणाम मिलेगा। आपका संघर्ष भी होगा तो आप उससे बाहर हो सकते हो, लेकिन अगर आपके कृष्णा कॉन्शियसनेस में और आपके कृष्णा कॉन्शियसनेस में खुश रहने में आपको कुछ तकलीफें हैं तो उसका परिणाम भी आपको घर में दिखाई पड़ेगा। इसलिए हम काउंसलिंग काउंसलर के पास जाते हैं, उनके गाइडलाइन लेते हैं, क्योंकि जब हम परेशान रहते हैं तो हमारे बच्चे भी समझते हैं कि आज पापा बहुत परेशान है, आज बात नहीं करना है, पापा अभी बहुत टेंशन में है, गुस्सा है, कुछ बोलेंगे तो डांट देंगे मुझे, तो उस दिन वातावरण तंग रहेगा। अगले दिन वातावरण आप खुशी से घर जाएंगे तो कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं। तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, हाँ हम लोग भी इंसान हैं, हमको भी तकलीफ हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी तकलीफ होने के बाद भी सच्चाई बदलती नहीं है। अगर आप एंग्जाइटी हो तो आप उनको एंग्जाइटी दे रहे हो, अगर आप खुश हो तो आप खुशियाँ दे रहे हो। यू कैन गिव हैप्पीनेस टू अदर्स ओनली वेन यू आर ट्रूली हैप्पी, यू कैन नॉट गिव आर्टिफिशियल हैप्पीनेस टू देम।
Last week I went for an interview and the moment I was leaving from home, both my daughters came and then they were there at home at that time. And then they came up with Kurt and Jeannie. And when I was leaving the gate, so they said, Papa, always remember Krishna, never forget Krishna.
स्वर्तव्यम सदानं कृष्णा विस्मर्तव्यम न दातु चित्तं।
Because whenever they go for the exams, I always tell them the same thing. So they repeated and I was like crying while going down the stairs.
So, हाँ, so जो आपने प्रेम से कल्चर दिया है, खुशी से दिया है, वो उनके हृदय को छुआ है। आपने डांट के रूप में दिया है, जो जबरदस्ती के रूप में दिया है, वो इधर नहीं छुएगा। तो बोले ठीक है, अभी मैं यहाँ एक्सेप्ट करता हूँ उसको, एक दिन आप जैसे आपका अधिकार छूट जाएगा तब मैं छोड़ दूंगा उसको। लाइक दिस। हाँ हाँ पूछो पूछो, कोई बात नहीं, सब लोग पूछो। हाँ आप पूछिए, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं।
हम लोग विशेष रूप से मैं भक्त बनने से पहले एक फेस जीवन ऐसा था जहाँ पर नितांत रूप से भौतिकतावादी जीवन था और ऐसी परिस्थिति में एक संयुक्त परिवार में जहाँ पर जन्मे पले बढ़े हैं, कई सारे रिश्तेदार हो रहे हैं, संबंधी हैं और परिवार में रिश्तेदारों के बीच में मित्रों में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती रहती है कि हमें उनके दुख में या सुख में शामिल होना एक सामाजिक पारिवारिक जवाबदारी होती है। लेकिन जब हम भक्ति करने के लिए जुड़े यहाँ पर आए तो वो जवाबदारी तो पीछे छूटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जवाबदारी बल्कि और बढ़ गई क्योंकि हम एक ऐसे विश्वव्यापी परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, प्रभुपाद के परिवार के साथ, जहाँ पर हमारे असंख्य भक्तों के संग में संबंध स्थापित हो रहे हैं। किंतु जब ऐसे भक्त समाज के बीच में निसंदेह रूप से हर एक भक्त के जीवन में खुशी और दुख प्रकट होते रहते हैं, किसी भक्त के परिवार में कोई किसी की मृत्यु हो गई या किसी के घर में कोई संतान उत्पन्न हुआ, किसी का विवाह हुआ, तो ऐसे अवसर पर उस भक्त के संग में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और हमें कहाँ किस सीमा तक हमें उनके संग में उनके सुख या दुख में शामिल होना चाहिए, ये हमारी क्या जवाबदारी है उनके प्रति।
हम लोग है ना, हरे कृष्णा के लोग जो है ना, इन जवाबदारियों को दिमाग में बहुत कम पड़ते हैं। ये मेरा भी यही प्रॉब्लम है कि मैं करना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, लेकिन इसी के वजह से वो लोग फिर आगे भक्त नहीं बनते हैं, क्योंकि ये कॉमन रिवाज है ना, कोई मर गया तो जाना उनको मिलना, कोई जन्म हो गया तो मिलना जाना, कोई किसी का शादी है तो जाना वगैरह वगैरह, वो तो मिनिमम बेसिक है। वो आप हर पार्टी में जाके किटी पार्टी में जाके सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उसकी मृत्यु होती है, किसी का जन्म होता है, किसी की शादी है, घर की शादी है, तो आप उसको डाल नहीं सकते हैं। फिर उसकी वजह से वो लोग हमारे कृष्णा कॉन्शियस लाइफ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि इनमें ना बहुत गर्व हो गया, अभी वो तो अपने आप को कुछ बड़ा समझते हैं और हमारे बीच में नहीं आते हैं। ऐसा उनको एक फीलिंग होता है कि आप बहुत अहंकारी हो गए हो, आपको बहुत अपने लाइफ स्टाइल पर बहुत गर्व है, आप अपने आप को बहुत शुद्ध समझते हो, बहुत ऊंचा समझते हो, हमको नीचा देखते हो, ऐसा एक फीलिंग निर्माण होता है क्योंकि आप बेसिक कर्तव्य करने में चूक रहे हो। तो मेरा तो ऐसा विचार है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एक पारिवारिक एक्टिविटी है। लाइफ इन गोलोक वृंदावन जो है ना, गोलोक वृंदावन का जीवन है वो भी एक पारिवारिक जीवन है। उसमें भी यशोदा माई है, नंद महाराज है, ग्वाल बाल है, चाचा है, बड़े हैं, छोटे हैं, गोपियाँ हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, हर प्रकार गाय हैं, सब प्रकार के जीव हैं उसके अंदर, और सब प्रकार के जीव मिलकर एक सुंदर कौटुंबिक जीवन जीते हैं। जैसे आप कृष्ण लीला में पढ़ते हो ना, उनका गाय का संबंध, उनका मोर का संबंध, उनका माँ के साथ संबंध, उनका गोपियों का संबंध, उनका ग्वाल बालों के संबंध, ये सारा एक पारिवारिक जीवन का उदाहरण है। तो हमको गौलोक में जाकर भी पारिवारिक जीवन ही जीना है, प्लीज अंडरस्टैंड। न्यूक्लियर फैमिली का कृष्ण कॉन्शियसनेस जीना नहीं वहाँ पर जाके, गौलोक में जब आप जाएंगे जब योग्य होकर, तो वहाँ एक विशाल पारिवारिक जीवन आपको जीना है और उसकी ट्रेनिंग आपको यहाँ लेनी है। तो अगर आपका भाग्य है कि आपके पास जॉइंट फैमिली है तो ये कोई दुर्भाग्य नहीं है, आपका भाग्य है। जो लोगों का भाग्य मिट गया है, जिसको लोग नॉर्मल समझते हैं न्यूक्लियर फैमिली, वो आपका भाग्य है कि आप जॉइंट फैमिली में हो। उस समय के सारे मूलभूत कर्तव्य आपको निभाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ मूलभूत कर्तव्य, बेसिक आपको करना ही चाहिए। जितने आप उसको अच्छी तरह निभाओगे उतना लोग आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आपके लाइफस्टाइल का रिस्पेक्ट करेंगे, बाद में कभी जाकर आपके फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक ये मूलभूत कार्यों में अगर आप सहभागी नहीं होते हो तो आपका आदर करना बंद कर देंगे, एक समय घृणा करना शुरू कर देंगे आपसे, देखते हैं उनको रिपल्शन आएगा आपको देख के। तो एक तरह से उनका कृष्ण कॉन्शियस आगे की संभावना है उसको आप नष्ट कर रहे हो। इसलिए मृत्यु, जन्म, शादी वगैरह वगैरह जो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं तो जरूर आपको जाना चाहिए। लेकिन सुबह अच्छी तरह सोलह माला फर्स्ट क्लास अटेंशन में करके, ज़्यादा अटेंशन में करके जाना, ताकि वहाँ आप घुलमिल न जाएँ, अपना ड्यूटी करें अच्छी तरह से, कर्तव्य निभाएं, अपना रोल अदा करें और लौट के आ जाएं। इधर आंसर योर क्वेश्चन। हाँ,
लेकिन जब हम भक्तों के बीच में हैं, भक्तों के संग में, जैसे हम यहाँ पर भक्त समुदाय हैं और हमारे भक्तों के परिवार में कुछ ऐसी विपत्ति आती है या खुशी होती है, तो उसमें हम कहाँ,
जितना हो सके उतना आपको जाना चाहिए। जब आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो तो भक्तों के लिए क्यों नहीं कर रहे हो, वो तो आपका रियल परिवार है। शरीर संबंधित परिवार के कर्तव्य आपको करना ही चाहिए, तो ये तो आत्मा के संबंधित परिवार है, तो करना ही चाहिए। लेकिन कभी कभी बहुत हो जाता है, मतलब इधर का उधर का, तो कुछ कुछ यहाँ का नहीं कर पाते, कुछ कुछ वहाँ का नहीं कर पाते हैं, तो इसमें सलाह एक ही है कि कोशिश कीजिए आप जितना हो सके उतना करने की। क्योंकि भक्तों के जीवन में भावना होती नहीं क्या, और किसी भक्त की माँ गुजर गई तो उसको दुख नहीं होता है क्या कि वो गता सुन गता सुमश नानु स्वतंत्र पंडिता बन गया है, नहीं ना, दुख तो होता है ना। उस समय उसको वही प्रेम की आवश्यकता होती है, अगर वो कोई रिश्तेदार आके दिया तो वो उसके गले में पड़ेगा वो, और भक्त आएगा तो उसके गले में बैठ के रोएगा, उसको पास भी चॉइस नहीं है, उसको दुख हो रहा है, किसी का कंधा चाहिए उसको रोने के लिए, तो चार भक्त आ गए तो भक्तों के कंधे में जाकर रोएगा, और कोई भक्त आया ही नहीं तो फिर जो अवेलेबल है उसके कंधे पर रोएगा, तो उससे उनका प्रेम बढ़ेगा क्योंकि वो जब दुखी थे तभी कंधा दिया उन्होंने रोने के लिए, तो वो नेचुरली प्रवृत्त होगा उनकी ओर। देखो जब समस्या हुई तो किधर थे हरे कृष्ण वाले भक्त हमारे, वो तो वही तो आए थे सब लोग, वो तो बड़ा अपना कर्तव्य निभाते हैं अच्छी तरह से, हरे कृष्ण के लोग आते नहीं। तो भक्त होने पर भी आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी भक्तों के ऊपर। मैं भी सब जगह जा नहीं पाता हूँ, मेरी पत्नी हमको बोलती रहती है आप जाते नहीं हो, जाओ जाओ, कभी बहुत थका रहता हूँ या कभी किसी मीटिंग में फंसा रहता हूँ, लेकिन मुझे ये बात पता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, निश्चित रूप से ज़रूरी चीज़ है और ये करना बहुत आवश्यक है। जैसे कोई मरणासन्न अवस्था में है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनको जाके मिलें, तो कोशिश करके जाना चाहिए उसके पास, क्योंकि पता नहीं आपका पाँच मिनट का संग उसको क्या मदद करेगा। हाँ, हाउ इट विल हेल्प हिम, और कितना उसकी श्रद्धा बढ़ेगी भक्ति और भक्तों के ऊपर की। जैसे हमारे लिए बहुत कष्ट है यहाँ से वहाँ नोएडा जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक है ये वो, लेकिन वो आप अगर कोशिश करके पहुँचे और दो मिनट दिया उनको, तो जो अचीवमेंट आपको होगी ना वो आप वर्णन नहीं कर सकते उसका, वर्थ इट आप बोलेंगे। एनीवे तकलीफ होगी बहुत ट्रैफिक वाली, लेकिन मैं गया ना, अच्छा हो गया बहुत, ऐसा आपको लगेगा। और नहीं गए तो आपका रीजन बहुत है कि भाई क्या करें, बारिश थी, ओले गिर रहे थे, रास्ते में ट्रैफिक थी, ये था वो था, आपका रीज़न तो वैलिड है, लेकिन जो हासिल कर सकते थे आप वो नहीं कर पाए, आपके हाथ से मौका निकल गया। इसलिए देखो क्या है ना, हम लोग वैसे सब लोग भक्त 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 बोलते हैं, भक्त बन रहे हैं, भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, भक्त बनना नहीं था अब बनने की कोशिश, जो वॉट एवर हम लोग लैंग्वेज वापरेंगे यूज़ करेंगे, लेकिन हम लोग कॉमन पीपल हैं, ये कभी भूलना मत। हम लोग उसी समाज से आए हुए कोशिश करने वाले भक्त हैं, उसी समाज के हैं, उसी स्थितियों से आए हुए हैं, कोई ऊपर से टपके हुए लोग नहीं हम लोग, वी आर कॉमन पीपल। और कॉमन पीपल होने के नाते हमको सारे इमोशंस हैं, हमको दुख होता है, सुख होता है, हम कोई बच्ची फेल हो गई तो दुख होता है, बच्ची खुश फर्स्ट रैंक आए तो खुशी होती है, नाचते खुशी से हम लोग, दिवाली पे खुशियाँ मनाते हैं, होली में खुशियाँ मनाते हैं, वी आर कॉमन पीपल, नथिंग एबनॉर्मल इन दैट। इसलिए हमारी बाकी जो भावनिक ज़रूरतें होती है वो भी कॉमन ही होती है। अभी मैंने काफ़ी लोगों को डेथ केयर दिया फॉर एग्जांपल, लेकिन जब मेरे घर में कोई डेथ होगी ना तो मैं आपके केयर पे डिपेंड रहूँगा, मैं खुद के केयर नहीं ले सकता उस समय। अभी ना कहते हैं प्रभु जी को क्या ज़रूरत है, वो तो दुनिया भर के लोगों को केयर दे रहे हैं डेथ केयर मरने के समय, लेकिन जब मेरे घर में वो समस्या आएगी तो मुझे आप सब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उस समय। भले मैंने कितना एक्सपीरियंस लिया होगा, मैंने कितनी बार देखा है कोई मरता है ना व्यक्ति, ऐसे कई लोग होते हैं समाज में जो कोई भी गुजर गया ना वो लोग हाजिर हो जाते हैं उधर, वो डंडी पकड़ने में, बांधने में, इसमें फिर वो उनका एक मूड है उनका, वो किसका रिश्ता हो या ना हो, किसी की डेथ हो गई तो वो लोग वहाँ पर रहते हैं हमेशा, कुछ कॉमन फिगर रहते हैं ऐसे, वो आ जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, आ जाते हैं टाइम निकाल के एंड तक पहुँचा देते हैं और चले जाते हैं। उनको बहुत अनुभव है कि एंड में क्या करना होता है, सब उनको पिट पैट पता है। जब उनके घर में डेथ होती है तो एकदम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वो, जिन्होंने 50 लोगों का तिरड़ी बांधा है, लेकिन उनकी माँ की डेथ होती है एकदम कन्फ्यूज रहते हो, उस समय उनको आपकी ज़रूरत होती है कि आप आके उनकी मामी मम्मी की तिरड़ी बांधे, समझे आप मेरी बात को। यह कितनी बार देखा मैंने, बिकॉज उस समय इतना भावना का अतिरेक होता है कि वो उसका रूटीन भूल जाता है, वो किसी और के डेथ के लिए सब कुछ कर सकता है वो। जैसे डॉक्टर समझो, डॉक्टर है जो वो सबके बच्चों का इलाज करता है, जब उसका बच्चा बीमार पड़ता है तो कभी इलाज नहीं करता है वो, कभी भी नहीं करता है, कितना भी एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन को ना हो, अपने फ्रेंड को बोलेगा भाई देख ले मेरे बच्चे को, आई कॉन्ट टेक डिसीजंस, क्यों, मेरी इमोशंस उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए मैं ज़्यादा अभी इसमें देखभाल नहीं कर सकता। ये ह्यूमन नेचर है, ये सीनियर डिवोटीज के अंदर भी मैंने देखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं क्या सीनियर डिवोटी है, एक डेथ हो गया तो कितना कन्फ्यूज हो गया, कृष्ण तो कहते हैं कथा सुनो कथा सुमश्चा, इनमें तो कुछ दिखता नहीं मेरे को ऐसे। बट अर्जुन भी या कृष्ण भी, अर्जुन भक्त के पहले एक इंसान पहले है वो, उसके बाद में वो भक्त है। तो इंसान के रूप में जो भी उसको ज़रूरतें हैं वो निगेट नहीं होती है भक्त बनने के बाद में, उल्टा और सेंसिटिव हो जाती है, सब चीज़ें डेवलप हो जाती है। अभी बहुत क्रूड स्थिति में है आपके इमोशंस, जब भक्त बनते हो आप तो और फाइन हो जाती है वो, रिफाइंड हो जाती है वो उसकी इमोशंस, क्योंकि आज आप जितने व्यक्ति हो उससे अधिक अच्छे डेवलप व्यक्ति भक्त बनने के बाद में बनते हो। तो व्यक्तित्व की जो मैनिफेस्टेशंस है वो कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, बताइए आप। आपकी भावनाएं जो नेचुरल भावनाएं हैं वो एक अच्छा भक्त बनने पर आप क्या समझते हो कि उसको दुखी नहीं होगा, माँ मरे या बाप मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा बनेगा कि वो प्रेम उसका इतना होगा कि वो रोएगे। गुरु भाई जाते तो रोते कि नहीं रोते, बोले क्या रिश्ता है आपका उनका। जब आप भक्त बनते हो तो आपकी भावनाएं और रिफाइन हो जाती हैं, बहुत सुंदर हो जाती है, उस समय आपकी ज़रूरतें भी उतनी जब बढ़ जाती है उस समय। आई एक्सपेक्ट यू व्हेन आई प्रे फॉर व्हेन माई रिलेटिव विल डाई, माई क्लोज रिलेटिव विल डाई, आई विल लाइक यू टू बी देयर बिकॉज आई लव यू, आई एक्सपेक्ट यू टू बी देयर। आपको लोग कहेंगे क्या प्रभु जी आप इतने, ऐसा बोल सकते हैं आप। बट जैसे वो महामुनि प्रभु थे हमारे, ये उदाहरण ज़रूर सुनना आप, यू मस्ट हेयर दिस। महामुनि प्रभु जी ना वो प्रभुपाद डिसाइपल हैं और वो अमेरिका के आर्मी में बहुत बड़े कर्नल थे। मतलब आप सोचेंगे कितना टफ आदमी होगा वो, ऐसा लंबा चौड़ा 6 फुट 2 इंच का ऐसा लेकर, रियल सार्जेंट, रियल रियल आर्मी मैन। तो जब प्रभुपाद जी का शरीर छूटा, प्रभुपाद जी का अंतर्धान हो गया प्रभुपाद जी, तो उनको ऐसा हैवी प्रीचिंग किया गया, प्रभुपाद इज देयर इन हिज बुक्स, प्रभुपाद उनके किताबों में है, प्रभुपाद उनकी शिक्षा में है, प्रभुपाद उनके भक्तों में है, प्रभुपाद उनके सीनियर डिवोटीज में है, प्रभुपाद नहीं गए हैं, प्रभुपाद है, तो बेचारे रोए नहीं वो। उनको कहा गया कि आपको रोना नहीं है, किताब पढ़ो उनकी, उनके उनके अस्तित्व का अनुभव करो, उनके सान्निध्य का अनुभव करो। उन्होंने कहा है कि आई एम इन माई बुक्स, यू विल फाइंड मी इन माई बुक्स, ऐसा उनको हैवी प्रीचिंग किया गया। अभी नॉर्मल क्या था कि उनको रोना था कि मेरे गुरु चले गए, मुझे कैसे मैं होगा, अभी हाउ कैन आई लिव विदाउट माई गुरु फिजिकल प्रेजेंस। मैं गुरु के शरीर से ना होने से अभी तक मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, अब तक तो शरीर के साथ उनके साथ रहने का मुझे अनुभव है, अब मैं कैसे जीऊँगा, ऐसा एक दुख था और बहुत रोना था उनको। लेकिन वो स्थिति में उनको ऐसा हैवी प्रीचिंग किया गया सीनियर से कि प्रभुपाद को किताब खोलो अभी आप, आपको तुरंत उनका अस्तित्व का अनुभव आएगा, प्रभुपाद जी के मंदिर में जाओ, आपको तुरंत उनके अस्तित्व का अनुभव आएगा। तो वो रोए नहीं, एक फिलोसॉफिकल तौर से उन्होंने एक सार इंटेलेक्चुअल एडजस्टमेंट कर लिया मन में बौद्धिक स्तर पर कि नहीं रोना है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि प्रभुपाद अपने परपोर्ट्स में हैं। उसको बहुत साल बीत गए, बहुत साल के बाद में, कौन साल गए भक्ति तत्व महाराज, 10 साल हो गए देंगे 2006। उस साल पे भक्ति तत्व महाराज गुजर गए, हमारे गुरुदेव उनके साथ में 7 हफ्ता थे गीता नगरी में, और संगीता माता जी भी थी और महामुनि प्रभु भी थे, और उनके सामने ही भक्ति तीर्थ महाराज का देहांत हो गया। तो ये इतना रोए, रोते रहे। उनको भी समझ में आ रहा था कि मैं इतना क्यों रो रहा हूं, ऐसा खुद उनको प्रश्न आ रहा है, उतना क्यों रो रहा हूं। बाद में उनको ये पता चला अंदर की अनुभूति से कि मैं प्रभुपाद के लिए भी रो रहा हूं जो उस समय नहीं रोया था। कितनी कितनी गहरी बात है ये बात, उनको खुद को पहले समझ में नहीं आया, बाद में खुद को समझ में आया कि एक्चुअली मेरी ये नीड थी उस समय रोने की जो दबाई गई, आज वो इनके बहाने बाहर आ रही है और आज मुझे हल्का लग रहा है बहुत। इसलिए जिनका उनको पता था कि इनके लिए मैं इतना रोने की मेरी भावना है, उससे कहीं ज़्यादा मैं रो गया, तो उन्होंने आके हमको बताया कि मैं ज़रूर कर्नल हूँ, ज़रूर सार्जेंट हूँ अमेरिका का, मैंने 20 साल आर्मी में 1-to-1 कम्बैट किया हुआ है, सब कुछ सही है, लेकिन मैं उसके अंदर मैं एक इंसान हूँ, वो इंसान मरा नहीं है अभी अंदर का मेरे, उसके सारी भावनाओं और सारी भावना ज़रूरतें सब वैसे की वैसे ही हैं, भले मैं बंदूक लेके AK-47 लेके युद्ध में लड़ता हूँ, 50 लोगों को मार देता हूँ, उसका मतलब मेरे अंदर का इंसान का मौत नहीं हुई है, उसकी ज़रूरतें वैसे ही है। तो अगर आप कृष्ण कॉन्शियस भक्त बने हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी भावनाएं भी शून्य हो चुकी है, वो मायावादियों का प्रचार होता है, हमारा प्रचार नहीं होता ऐसा। आप देखिए कृष्ण भक्त चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़िए आप, कितने इमोशंस हैं उसके अंदर, कितना रोना है। आचार्य श्रीनिवास कितने रोए हैं जब गदाधर पंडित चले गए, इतना रोए वो, आप पढ़िए चैतन्य चरितामृत, आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि ये भक्त है कि क्या, ये भगवान गीता में कुछ बोल रहे हैं, ये लोग तो रो रहे हैं ऐसा आपको लगेगा, और क्या खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं प्रसाद का, इतना वर्णन किया कि बोले क्या भक्त बन के खाना ही खाने के लिए भक्त बने क्या, कितनी चर्चा है प्रसाद के बारे में। लेकिन महाप्रभु चैतन्य बता रहे हैं कि वी डोंट बिकम लेस ऑफ अ पर्सन व्हेन वी बिकम डिवोटीज, वी बिकम मोर ऑफ अ पर्सन। और ये कभी भूलना नहीं चाहिए, हमारी इंसानियत की जो स्वाभाविक और प्राकृतिक जरूरतें हैं उसका आदर करना सीखना चाहिए हमको, कभी उसका अनादर नहीं करना चाहिए, कंडेम नहीं करना चाहिए, क्या माता जी आप इतना रो रहे हो, अब भक्त हो ना, अभी आप संभालो अपने आप को, क्या फ़ायदा इतना जप करके इतने साल फिर भी रो रहे हो, ऐसे बोलना अपराध है किसी को बोलना, आप उनके प्राकृतिक भावनाओं का अनादर कर रहे हैं, इनसेंसिटिव टॉक है ये, बहुत असंवेदनशील बातें हैं सब ये। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस होने के बाद में आपको एक अच्छा इंसान और अच्छा प्रगत इंसान बनना चाहिए, जिसमें सारी भावनाएं आदरपूर्वक हम निभाते हैं दूसरों की, हमारी भी, समझ के साथ, पूरी जानकारी के साथ, साक्षात्कार के साथ। यस प्रभु जी,
खाने के ऊपर क्वेश्चन होगा, या उनके जो फंक्शंस अटेंड करते हैं जिसमें कि मतलब प्याज लहसुन होता है तो, और वो प्रसाद के फॉर्म में आपको बोला जाता है कि जैसे मान लो कि दाह संस्कार करके आते हैं मान लो, और घर अब वो कहते हैं दाह संस्कार के बाद खाना परोसा जाता है, वो प्रसाद होता है, उससे अगर नहीं खाया तो आत्मा को दुखी होगा, ये होगा, इस तरीके के मतलब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में हमें भक्तों को क्या करना चाहिए?
भक्तों के लिए कुछ बातें, एक बार आपने अगर भक्त बनने का निर्णय लिया तो कुछ बातें 100% निषिद्ध हैं, कुछ बातें एडजस्टेबल हैं, उसमें से 16 माला और 4 नियम ये अनएडजस्टेबल नियम हैं। एक बार आपने तय किया आपको भक्त बनना है, तो फिर अगर आप भक्त बनने के रास्ते में हैं, अब तक छोड़ा नहीं लहसुन प्याज, अभी तो चाय कॉफी पी रहे हैं, 2-4 माला कर रहे हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस स्थिति की बात कर रहा हूँ कि आपने अभी दीक्षा ले चुके हैं, समझो आप 4 नियम का वादा किया है गुरु जी को, तो किसी भी हद पर किसी भी स्थिति में आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अभी हम कल ब्रजवासी के घर पर गए थे ऊँचे गाँव में, और मुझे पता नहीं ऐसे ही जब थाली आई तो मुझे ऐसा लहसुन प्याज का वाद बू आया, तो मैंने देखा तो दाल में प्याज था, तो ब्रजवासी जिसने बुलाया था उसके बहू ने बनाया था, क्योंकि वो जब उनके बहू अगर खाते हैं बच्चे तो वो खाते हैं सब कुछ ये, और वो जिन्होंने इनवाइट किया था वो खेत पर थी, वो आ रही थी, उसमें बहू ने अपनी तरह से बना दिया, वो दे दिया, तो मैंने दाल उठाकर रख दिया, बोले हम लहसुन नहीं खाते, तो क्या किया रोटी और अचार खाया और छाछ पिया उसके ऊपर। लेकिन हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, इज़ वेरी क्लियर। चाय पी लो प्रभु, चाय पी लो, चाय बनवा दूँ आपके लिए? नहीं प्रभु, चाय नहीं पीते हम लोग। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसको हम लोग पास कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन समझ, आप शादी में गए समझो फॉर एग्जांपल, और मेरे भाई की लड़की की शादी, घर की शादी, मेरे बड़े भाई की लड़की की शादी, अभी वो तो डिवोटीज नहीं है, तो मैंने पूछा क्या भाई हमारे लिए कुछ है क्या इसमें भोजन के लिए, तो उन्होंने लिस्ट बताया कि ये ऐसा ऐसा है, उसको भी पता नहीं था क्योंकि वो लड़के वाले कर रहे थे, कुछ ऐसा कुछ था कॉम्प्लिकेशन। तो मैं सीधा काउंटर पे गया और चीफ आदमी को पूछा कि भाई क्या है इसमें, तो उन्होंने बताया कि ये सब इसमें इसमें लहसुन प्याज है और इसमें नहीं है, मतलब एक्चुअली कुछ था ही नहीं हमारे लिए। क्या था पता है? चावल दाल और दही था। तो चावल दाल दही लिया और हमारे प्लेट में ऑफर किया भगवान को और खाया उसको। लेकिन मेरे भाई के बेटी की शादी में मैं बिना खाए जा नहीं सकता प्रभु जी, वो इतना निंदा करेंगे मेरी, इतनी घृणा करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस की कि ये लोग कैसे लोग हैं, ये लोग घर की शादी में नहीं खाते। तो इसलिए आप बोलेंगे क्या भोग तो लगाया नहीं इसका, घंटी तो बजाई नहीं, हम लोग नहीं खाते ऐसे, हम बाहर का किसी के हाथ का खाना नहीं खाते, हर भक्तों के घर में मतलब भक्तों के घर से यानी बीवी के घर से हाथ से खाना खाते हैं, ऐसे सब नियम उनको नहीं बताना चाहिए। उस समय शादी तो क्या है, भाई की बेटे की शादी लाइफ में एक टाइम आने वाली है और सेकंड बेटे की एक बार आने, दो ही इवेंट है आपके लिए थोड़ी हर बार, तो उस समय आपको वो कॉम्प्रोमाइजेबल आइटम है, आप बिना ऑफर किया खाना अपने को जो जमता है वो निकाल के आप बकायदा बैठेंगे प्लेट पे और ऑफर करेंगे मन में मंत्र बोलकर और खाएंगे उसको। लेकिन मंत्र बोलकर आप लहसुन प्याज का आइटम नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो आपका इनएविटेबल सिचुएशन है, ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग तय करो किसको देना है चांस, मैं भी हाँ बोलो, हाँ माइक ले बात कीजिए।
हम घर में बिना प्याज लहसुन का खाना बनाते हैं और पर जब बच्चे स्कूल में जाते हैं वो 10 तरह की चीजें देखते हैं, फिर आके उन्हीं चीजों को हम पे फोर्स करते हैं कि ये चीज चाहिए, ये करना है, और मम्मी दादी जो है वो कभी प्यार से उन्हें चिप्स ला के दे देती हैं, कुछ हम तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लाते हैं पर वो लोग तो बिना पढ़े लेके आएंगे, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना?
उसका आंसर मैंने पहले ही उनको दे दिया है कि आपके घर में आपको शुरू से ही एकदम स्ट्रॉन्ग कृष्ण कॉन्शियस एटमॉस्फेयर पैदा करना है शुरू से ही। फिर बच्चे आपके पूछेंगे, किसी घर में बर्थडे गए ना, आंटी जी आपके केक में अंडा है क्या, हम लोग नहीं खा सकते। आंटी जी आपके चिक्स में लहसुन का पाउडर है क्या, वो हम नहीं खा सकते। आंटी जी आपके आइसक्रीम में एग्स है क्या, वो मैं नहीं खा सकता। ऐसे आपको जवाब मिलेगा।
You have to explain to them.
हाँ, हमारे पास टाइम ही रहता नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। वो बच्चों को ना हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए और हमारे पास उतना पेशेंस चाहिए कि हर क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए उनको। आप सुन रहे हैं मेरी बात?
और एक्सप्लेन करने के बाद में भी ना फॉर फ्यू टाइम्स दे ईट आल्सो बट
कीप ऑन टेलिंग देम नाइसली
यू कीप टेलिंग देम स्लोली स्लोली दे विल स्टार्ट सेइंग व्हाट यू आर सेइंग।
आपको दो तरह की स्थिति का सामना आपको हो सकता है, या तो बाहर कुछ देखेंगे और आपको फोर्स करेंगे मम्मी हमको भी बनाओ, या तो आपको पता चलेगा कि आपका बेटा तो पूछ रहा था कि एग में अंडा है क्या, उसने खाया नहीं, मैंने कितना बोला थोड़ा सा खा ले, बर्थडे का केक है फ्रेंड का तेरे, उसने नहीं खाया, उसने खाली पोटैटो चिप्स खाया आया नहीं। तो आपको आप ही दोनों स्थिति के जिम्मेदार है, याद रखना इस बात का, यू आर द सोर्स। अगर स्थिति ऐसी है कि बच्चा ने नहीं खाया आग्रह करने पर भी, क्रेडिट गोज टू यू। अगर वो वहाँ देख के आपको मजबूर कर रहा है मम्मी मुझे भी खाना है वो लहसुन क्या पकौड़े, तो इट इज़ फेलियर टू यू, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल ऑफ बोथ सिचुएशंस। हमारी बीवी ने क्या किया पता है? हमारी बीवी ने हर चीज जो मार्केट में मिलती है उसको घर में बनाया है बहुत बढ़िया तरीके से, लहसुन प्याज के बिना जो मार्केट में आइटम आता था वो घर में बनाती थी। तो वो बेबी इतना सेटिस्फाइड है तो उसको जरूरत ही नहीं बाहर जाके कुछ गुल खिलाने की। एक्सप्लेन 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 टॉक टॉक एंड टॉक कीप टॉकिंग।
अपने इन-लॉज को भी समझाओ कि ऐसी चीजें हम अवॉइड कर रहे हैं तो उनको ये मत दो, एंड इफ दे डोंट लिसन देन यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट टिल योर चिल्ड्रन ग्रो अप एंड दे स्टार्ट
सेइंग दे अंडरस्टैंड
इट बट कीप टेलिंग योर चिल्ड्रन अबाउट इट कि यू नो ये होता है ना ऐसे ऐसे है, तो अभी दादा दादी ने लाया है आपको खाना ही है तो खा लो आप, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे होता है हम लोग ये नहीं खाते, तो लेट देम हैव बट देन लेट देम ऑल्सो नो कि यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट।
But don't condemn them for that. Huh?
You can
show that I'm unhappy, but don't show condemning attitude to them. Then they hate, start hating you. Huh. एक मिनट, आप देख लो किसको माइक दे रहे हैं।
सर मुझे मेरा रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने पूछा कि there are many rituals also which are in our family tradition, and we very well know in Krishna consciousness we are not proud to tell about our share. Many of the rituals, they also entail taking prasad, which is not offered first to Krishna and then as Mahaprasad. So sometimes there are confusions, what to do, whether to do in order to keep the family traditions and everyone happy or just
be sure. Okay, जैसे इन्होंने बताया उसका आंसर ऑलरेडी मैंने दिया आपको। अगर वो आप जो सत्यनारायण की पूजा में गए हैं, है ना, या कोई और कुछ पूजा में, देवी की पूजा में गए, घट स्थापना में गए, कुछ भी गए, तो आपको लहसुन प्याज का तो खाना ही नहीं है। ओके, रही बात बिना लहसुन प्याज के खाने की, और वो फिर शिव जी का प्रसाद के रूप में आपके पास आ रहा है या और किसी के देवी के रूप में आ रहे हैं, तो आपको वहाँ जाकर कुछ शो नहीं करना है किस चीज़ का, हम नहीं खाते वगैरह। आपको एक ही प्रिंसिपल दिया गया है, जो भी आपके कंठ से उतरेगा उसको आपको भगवान को भोग लगाना है, चाहे वो पहले किसी ने खा लिया हो, अभी शादी में आप 11 बजे पहुँचे, 10 बजे से ही पंगत शुरू हो गई, आप 11 बजे पहुंचे तो ऑलरेडी 4 लोगों ने खा लिया उसको, और फिर आपकी थाली में आया, वो क्या करे, ऑफ़र करे कि ना करे, ऑफ़र करना है आपको। अगर आपके कंठ के नीचे उतरना है उसको तो उसको ऑफ़र करना है, आपको खाना है चाहे किसी भी स्थिति में हो। जैसे भिक्षा करते ना, भिक्षा लोग करते ना, सन्यासी लोग माधुकरी करते ना, तो माधुकरी किया हुआ हर सामान उन्होंने खाया होता है, बच्चा को तो देते वो, फिर भी ये अमनिया जो होता है ना उसको अमनिया मानकर वो अपने घर में अपने ड्यूटीज़ को अर्पण करते हैं और फिर खाते हैं। सारे भिक्षा करने वाले लोग, ये भिक्षा करने वाले लोगों का ब्रजवासी में ये एटिकेट है। एक मिनट, तो अगर देवी देवी देवताओं का फंक्शन है तो आप उसको देवी देवताओं के प्रसाद के रूप में मत खाइए, आप उसको अपने स्वीकार करके मन में भगवान को ऑफर करके खाइए। आपको ये बात समझ में आया क्या? नहीं 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 नहीं, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत उच्च कोटि की हैं, सोच समझ के और उच्च कोटि की है, तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमको उसका मतलब ही नहीं पता है। अभी आज ये मेरे सासू जी मुझे क्यों बोल रही है, ना सासू को पता है ना बहू को पता है, ऐसी स्थिति हम लोग आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो युद्धलेस है सब कुछ, अगर उनको पता भी नहीं है, उनको पता नहीं है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशन को आप तोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि फिर वो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस की घृणा करना आरंभ कर देते हैं कि ये लोग कैसे हम संप्रदाय, इनका सब फॉरेनर लोग आते हैं, इनको कुछ पता है क्या, क्या घर में रिवाज होते हैं, शादी के बाद में होते हैं, क्या पूजा होती है, क्या होता है, क्या अलग अलग तरह के रिचुअल होते हैं, क्या देना होता है, देना होता है, ये लोग तो अंदर कुछ है ही नहीं, पता नहीं ये सब फॉरेन लोग को क्या करते हैं, लोग यही सोचते हैं इंडियन लोग कि अंग्रेजों का मंदिर है, इनको कुछ पता नहीं क्या होता है, दे डोंट नो एनीथिंग, ब्रज में होली हो रही है तो हमारे मंदिर में कोई उसका चिन्ह भी नहीं होता है, तो वो क्या समझते हैं, इनको क्या पता है, ये तो विदेश से आए, उनको क्या सिखाया प्रभुपाद जी ने, ऐसा उनको लगता है। ये भाव क्यों है, क्योंकि एक तो उनको पता नहीं है, और हम लोग जो भी इंडियन डिवोटीज हैं, हमको इंडिया का रीति रिवाज का कम से कम मतलब नहीं पता, लेकिन पता है कि होता है, फिर हरे कृष्णा बनने के बाद तुरंत हम लोग उसको मुंह मोड़ना आरंभ कर देते हैं, तो फिर हमारे रिश्तेदारों का जो भाव है ना, वो हरे कृष्णा के प्रति घृणा का हो जाता है। तो इसमें एक ही गाइडलाइन है, जितना अनअवॉइडेबल है उसको आप जाते रहिए, जो आप अवॉइड कर नहीं सकते हो, क्योंकि भाई के लड़की की शादी है, उसके दिन अगले दिन सत्यनारायण की पूजा है, तो आपको जाना ही है, यू कैनॉट से कि नहीं 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 मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन किसी और रिश्तेदारी का है तो आप अवॉइड कर सकते हो, तो करो अवॉइड उसको, अनअवॉइडेबल जो है आपको जाना चाहिए, क्या नुकसान है उसके अंदर करने में, अगर आप कृष्णा कॉन्शियस हो तो वट सवित्र का व्रत क्यों नहीं करना चाहिए, बताओ मुझे आप, करवा चौथ व्रत क्यों करते हैं, पति के लिए करते हैं ना, अगर आपके पति डिवोटी है, आप डिवोटी हो, क्यों नहीं करते हो पति के लिए करवा चौथ व्रत, अच्छा है कि बुरा है उसके लिए बताओ,
कथा में कोई मेंशन नहीं है कृष्ण,
वो भी क्या है ना, ये हम लोग क्लेम नहीं कर सकते कि जो एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंशन इन आवर स्क्रिप्चर देन ओनली विल डू इट, और एवरीथिंग प्रभुपाद हैज़ टू मेंशन इन समवेयर इन द स्क्रिप्चर इन परपोर्ट देन ओनली आई विल डू इट। प्रभुपाद जी बंगाली थे खुद, और भारत में तो 50 कल्चर्स है, और उनका संस्था साउथ इंडिया में भी मंदिर बना के रखा है, तो केरला से कोई ब्राह्मण फैमिली से कोई डिवोटी बना हरे कृष्णा में, जनरली नहीं बनते वो, जो बन गया कोई ब्राह्मण केरला का, हाँ हाई लेवल ब्राह्मण, कोई मद्रास का ब्राह्मण, कोई साउथ इंडिया कर्नाटक का ब्राह्मण बन गया हरे कृष्णा डिवोटी, तो फिर वो सारे घर के रिचुअल फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, तो उस समय ही कांड से पापा आई हैव बिकम हरे कृष्णा डिवोटी, हेल विद ऑल योर कल्चर, आई एम ओनली व्हाट प्रभुपाद सेड आई विल डू इट, दिस इज फैनेटिसिज्म। और अगर आप उनका आदर रखते हुए कुछ करेंगे, नुकसान कुछ नहीं उसके अंदर, आपको दारू पीने के लिए नहीं बोल रहे वो उस विधि में, इज इट नॉट ट्रू, लेट अस बी क्रूड अबाउट इट, हाँ ब्लंट अबाउट इट, कि आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आपको ये बीड़ी पीने होगी इसके अंदर, आपको ये एक पे एक देवी का शराब पीना होगा या मांस का प्रसाद खाना होगा, ऐसा बोल रहे हैं क्या, वो आपको केवल ना ही बोलना है उसके लिए, मैं आपको पहले गाइडलाइन दे दिया है, कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रेट नो, चाय कॉफ़ी ये सब नो, उसके बाद में आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर सकते हो, उसमें क्या होगा, आप एक ही चीज़ दिखा रहे हो उनको कि मामा पापा आंटी वॉट एवर मौसा, हम आपका आदर करते हैं, आई रिस्पेक्ट यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो शो देम कि आई रिस्पेक्ट यू, आई डोंट डिसरिस्पेक्ट एवरीथिंग ऑफ यू एंड योर लाइफ एंड एवरी दैम थिंग ऑफ योर थिंग, दैट यू थिंक यू आर ग्रेट पर्सन, यू हैव बिकम समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिकॉज ऑफ हरे कृष्णा डिवोटी, ये जो है ना ये सब स्पॉइल करता है अपने समाज में, जस्ट बी नॉर्मल ना, जस्ट बी नॉर्मल पीपल, रिस्पेक्ट द लोकल सिचुएशन, इफ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, अभी आप वृंदावन में रह रहे हो, रंग गिरेगा आपके ऊपर, मतलब हम लोग रंग नहीं खेलते, हमको जमता नहीं है, तो वृंदावन मत आओ होली के टाइम पे, सिंपल, बाद में आओ, जैसे वो हम लोग होली में गए थे तो वो माता जी बता रही थी, देखो माता जी अगर आपको होली देखना है तो आपको रंग डलने की स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो आप अपने घर में बैठो वृंदावन में मत आओ बरसाने में, आपको होली भी देखना है और आपके शरीर पे एक रंग भी गिरना नहीं चाहिए, आपको एलर्जी है उसकी तो आप मत आओ, इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर ना, आई लाइक इट सो मच, सो क्लियर, अगर आपको ये करना है तो आप मत आओ, अगर आपको आना ही है तो बिकने की तैयारी रखो। वॉट, नहीं 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 होली की बात नहीं कर रहा हूँ माता जी, आप, मैं आपको एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ चीज़ करनी नहीं है तो वहीं जाओ ही मत आप, मैं होली का विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं चर्चा कर रहा हूँ फैमिली रिचुअल्स की, मैं खाली एग्जांपल दिया उसका आपको, तो एनीवे आपको इनका क्वेश्चन भी आंसर करना ज़रूरी है, होली जो है ना होली, क्या टॉपिक है?
ये जो टॉपिक जो चल रहा था,
हाँ,
जैसे यहाँ से नॉर्थ इंडिया से हर कहीं ना कहीं लोग ना वैष्णो देवी जाते रहते हैं, तो वहाँ से प्रसाद ला के देते हैं, या फिर खाटू श्याम जाते हैं वहाँ से प्रसाद ला के देते हैं।
आप बोल रहे हैं, आप माइक पे बोलो था।
तो क्या करें?
मैंने बताया पहले आपको, आपके हाथ में आया, आपको कृष्ण को अर्पण करके खाना है, अमनीय है आपके लिए, वो भिक्षा की तरह है, उनके अनादर नहीं करना है आपको। नहीं नहीं नहीं, हम वैष्णव का प्रसाद नहीं खाते, हम तो कल कृष्ण का खाते हैं, ये सब कंडेम माना गया, ऐसा सब बात करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रेम से दे रहे हैं, उनकी श्रद्धा है ना वैष्णो देवी पे, वो आपको प्रेम करते हैं इसलिए आपको प्रसाद ला के दिया उन्होंने, उस भावना को एक्सेप्ट कीजिए। बोलेंगे अभी तो मैं खाना खा के आया हूँ, बाद में खाता हूँ उसको, बाद में आप उसको अर्पण कीजिए भगवान को, अपने मन में कीजिए, ऑल्टर में करने की जरूरत नहीं है, और खाइए उसको। हमारे घर में हर साल गणपति होता है हमारे इन लॉज के घर पे, तो पहले पहले तो हम लोग ऐसे ही खाते थे, जब अच्छा हमारा रिश्ता हो गया तो हमारी पत्नी ने क्या किया, उनको समझाया इस बात को कि आप ना पहले जगन्नाथ जी को अर्पण करो फिर गणेश जी को अर्पण करो, तो उन्होंने एक साल में उसको मान लिया, मतलब हम उनको जगन्नाथपुरी यात्रा में ले गए, तो सॉलिड इम्प्रेस हो गए, जगन्नाथपुरी यात्रा में आते ही डीडीज लगा के लेके आए घर पे, तो उस स्थिति का फायदा उठाते हुए नेक्स्ट साल इन्होंने बोला कि मम्मी आप अभी इनको पहले अर्पण करो और उनको उनका प्रसाद अच्छा लगता है बहुत, तो आप सारे मोदक वगैरह उनको अर्पण करो फिर गणेश जी को भोग लगाओ फिर हम पाएंगे। अभी हर साल उनका होता है उस तरह से होता है, बट कुछ साल हमने ऐसे ही तो पाया ना उसको मन में भगवान को अर्पण करके, रक्कस ने खड़ा किया उधरा के कि अभी हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, अभी आपका क्या रिचुअल है, ये डिबेट डिमिकॉड वर्शिप क्या है, ये सब ऐसा कंडेम नहीं किया कभी उसको, क्योंकि हमारा उनका इन लॉज का रिश्ता है, उसमें आदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिस्पेक्ट यू एज इन लॉ, आई कैनॉट बी एरोगेंट सन इन लॉ और डॉटर इन
लॉ।
वो माता जी को एक प्रश्न पूछा था बहुत देर से, वो हाथ
जिन्होंने
बार बार मत पूछो अभी,
और डिवोटीज को चांस मिले क्वेश्चंस पूछने के लिए जिन्होंने भी क्वेश्चंस नहीं पूछे। दूसरा, वी शुड कीप इन द माइंड आवर टॉपिक इज वैष्णवेटी, नॉट चिल्ड्रन के, नॉट रिलेशन के, ठीक है ये पूछ लिया ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक विच इज वैष्णवेटी, उसके ऊपर यदि आपके जो प्रश्न है वो प्रभु जी से पूछे, बिकॉज ऑलरेडी इट्स 1:40 एंड प्रभु जी स्पीकिंग फॉर सो लॉन्ग, मॉर्निंग में भागवतम क्लास दी, इवनिंग में प्रभु जी क्लास है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी क्लास है, तो जस्ट we should be very careful about that. That's the first
before my sugar levels go down and I feel unconscious.
This is the first Vaishnav etiquette ki hamare samne ek Vaishnav unke liye etiquette hai, unka bhi care hum sabse pehle
mata ji ko puchho, yes, mic pe bolna hai aapko,
वर्किंग प्लेस पे वेरी सीनियर्स बहुत रूडली बिहेव करते हैं लाइक, और उस टाइम बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइक यू आर नॉट एट फॉल्ट, सिंस स्टिल दे यू नो समटाइम्स हमें वो डिग्रेड करते हैं, तो बीइंग कृष्णा कॉन्शियस उस टाइम हमें क्या ये मेरा कर्मा है या किसी का भी, इज इट लाइक
डेफिनेटली कर्मा है, कर्म के बिना कुछ होता नहीं, यहाँ पर सारा कर्मों का तो हिसाब किताब है, यहाँ पर जो भी है बी ऑनेस्ट हम्बल एंड टॉक व्हाट इज द रियलिटी, उसके बाद भी कुछ होता नहीं है तो एक्सेप्टेड एज कृष्णाज मर्सी एज प्यूरिफिकेशन। हरि बोल।
This is related to one devotee, husband and wife. When sometimes because of money shortage, one like husband has to go out and wife is there alone at home.
Out means out of country.
Out of country or maybe out of that
state. State or whatever.
For some time. Is it like, is it right or like we can do or we should avoid this situation?
I have gone to Saudi Arabia alone. Without my family, when there was difficulty, तो इसको स्थिति को देख के देखना चाहिए, क्या स्थिति है, इमरजेंसी क्या है वो देखना चाहिए। कभी कभी लोग क्या होते हैं ना, अभी फॉर एग्जाम्पल बेसिक तो हो गया है, अभी बहुत सारा डिज़ायर्स पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो हम लोग उनको गाइड करते कि मत करो, यू आर गेटिंग इनफ, नॉट वे एफ्लुएंट वे बट रोटी दाल सब्जी मिल रही है आपको, तो आप आराम से रहो, डोंट रिस्क योर लाइफ विद सम फॉरेन कंट्री। तो मेरे बारे में जब ये डिस्कशन चल रहा था गुरु जी के साथ में, तो स्थिति बहुत बहुत ही भयंकर थी, मतलब बेसिक का भी प्रॉब्लम था, बेसिक घर का रेंट और अनाज का भी प्रॉब्लम था। तो फिर गुरुजी ने उसका डिसीजन करके निर्णय लिया कि अभी जाओ आप और ये बेसिक करके आ जाओ। लेकिन जैसे ही बेसिक पूरा हुआ, बोला तुरंत वापस आ जाओ, एक भी पैसा सेविंग करने का प्रयास मत करो। तो उन्होंने क्या मैसेज दिया उसके अंदर कि अगर वो लाइफ एंड डेथ के कंडीशन में आ जाता है, डू द नीडफुल, बट वेन यूर बेसिक थिंग्स आर, फिर अभी दाल रोटी आ गई, अभी गुलाब जामुन नहीं आ रहा है, तो गुलाब जामुन के लिए फिर अमेरिका जा रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। कृष्णा कॉन्शियस मीन्स बॉडी एंड सोल टुगेदर यू टू कीप नाइसली हैप्पीली बी हैप्पी। तो उस समय कैसे लौट के आए, उस समय जब भी लोन वन पूरा हो गया और बेसिक चीज़ पूरी हो गई, तो उस समय ऐसा निर्णय दिया गया गुरुजी की तरफ से कि दो रोटी अलग अलग एक एक खाने के बदले में एक रोटी आधी आधी साथ में खाओ। अभी वहाँ जाएंगे दो रोटी का इनकम होगा, एक रोटी ये यहाँ खाएंगे, एक रोटी मैं वहाँ खाऊंगा, यहाँ रहेंगे तो एक ही रोटी का इनकम होगा। तो बेटर टू ईट हाफ रोटी टुगेदर देन ईटिंग वन रोटी सेपरेटली। ये गृहस्थ लाइफ का प्रिंसिपल है, ध्यान रखना आपको, अभी इस पर आप चलोगे तो हमेशा खुश रहोगे आप। और रही बात इमरजेंसी की, अगर वो इतना खतरनाक कंडीशन में है तो बेटर गो एंड डू द नीडफुल, क्योंकि अल्टीमेटली दाना पानी नहीं रहेगा तो आदमी भक्त कैसे बनेगा, कैसे चैंटिंग करेगा। वो किसान लोग जाते हैं ना प्रचार करने के लिए, दिसंबर में हम जाते हैं किसान के पास, गांव में जाते हैं, भगवत गीता बांटते हैं, डिस्काउंट में दे रहे हैं, 130 की 80 में दे रहे हैं। बोला प्रभु जी, बोलते हैं क्या, हरे कृष्णा भगवत गीता ले लूँ, अभी खाने को अन्न नहीं है, पिताजी ने आत्महत्या किया है, इधर पैसा नहीं, इसलिए खेत किसान ने, मेरे पिताजी ने अभी खुदकुशी कर ली है, गीता लेकर क्या करूँगा मैं, फ्री में देंगे तो भी क्या करूँगा, पहले देखना है कि अन्न कहाँ से आएगा पहले। तो ये रियलिटी है लाइफ की, इसको आप टाल नहीं सकते, उसको लांग नहीं सकते उसको।
मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी हमारे डिवोटीज हैं जो इक्वल लेवल के या सीनियर हैं या जूनियर हैं, हमें फॉल्ट फाइंड करते हैं या हमको क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए।
नम्रता ये बेस लाइन है हमारा, अगर कोई आपको फॉल्ट दिखा रहा है और वो फॉल्ट सही है समझो, तो उसको एक्सेप्ट करने को सीखना चाहिए, भगवान की कृपा समझनी चाहिए कि कोई किसी ने आपको अपना फॉल्ट दिखाया। और एक बात ध्यान रखना, जैसे आप यू स्टार्ट बिकमिंग सीनियर ना, वैसे आपको आपका फॉल्ट बताने वाले लोग कम 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 होते जाएंगे। एक तरह से बहुत डेंजरस कंडीशन है, जब आप नए नए होते हो आपको अपना फॉल्ट बताने वाले बहुत लोग आपके जैसे होते हैं, जो आप बता सकते हैं आपको। एज सुन एज आप सीनियर बनते जाते हो तो आपको फॉल्ट बता सकने वाले लोग कम कम हो जाते हैं, और आप भी बहुत क्लोज हो जाते हो फॉल्ट सुनने के लिए। आपका अहंकार बोलता है कि अरे हाउ यू कैन टेल मी दिस, यू हैव कम यस्टरडे, तो आप नहीं ले सकते। आपको दो चार लोगों से आप फॉल्ट ले सकते हो बताया तो। इसलिए बेसिक इज बी हम्बल एंड बी रेडी टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स, somebody tells you, accept as mercy of Krishna। मुझे ना एक बात अभी याद आई है, मैं बिना भूले अभी पहले ही बता देता हूँ उसको। दो वैष्णवों के बीच में जितना हो सके उतना पैसे का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वैष्णव रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं तो कभी भी उनके साथ बिजनेस व्यवहार पार्टनरशिप वगैरह वगैरह पैसे की मत करना कभी भी। आपको तो मैंने आपके नॉन डिवोटी पार्टनर से भी कैसे करना है इसके बारे में बताया था आपको मैंने, क्योंकि पैसा ये ऐसी चीज़ है जो बड़ों बड़ों के बीच में दुश्मनी पैदा करती है, भाई भाइयों के बीच में हत्या हो जाती है, डिवोटी डिवोटर्स के बीच में क्या क्या नहीं होता है जब पैसे बीच में आ जाते हैं। इसलिए आपको रियली अगर वैल्यू है मन में आपके और भक्तों के रिश्तों को आप आदर करते हो, आप समझते हो कि ज़रूरत है मेरे लिए, बस भक्तों का रिश्ता होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही सही रिश्ता है, यही शाश्वत है, गौलोक तक चलने वाला रिश्ता यही है, बाकी सब टेम्पररी रिश्ते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जितना हो सके उतना भक्तों के साथ पैसे का व्यवहार मत कीजिए। धन संपत्ति प्रॉपर्टी ये सब जो चीज़ें हैं ना, जेवर अलंकार जो भौतिक पावरफुल चीज़ें हैं, उनके व्यवहार में भक्तों से मत आइए, जितना हो सके उतना भक्तों से स्पिरिचुअल लेवल पे रहिए। ओके, पिक्चर देखना है तो भक्तों के साथ जाएंगे, शॉपिंग करना है तो भक्तों के साथ जाएंगे, आई मीन इट्स ओके इट्स गुड, बट अगर आपका भक्तों के साथ में संग जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं हो रहा है तो वो सत्संग के कैटेगरी में नहीं आता है। आपने होटल में जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाया भक्तों के साथ में, जो प्रसाद नहीं था लेकिन आप आनंद लेके कुल्फी खा के समुद्र पे जाके आए, पानीपुरी खा के आए, तो उसको सत्संग के रूप में नहीं कह सकते। अरे तो मैं भक्तों के साथ में गया था, पिक्चर देख के आए, कोई फिल्म नया फिल्म शाहरुख खान का देख के आए, तो सत्संग के रूप में नहीं गिना जाएगा वो। जब आप सत विषय में भक्तों के साथ संग करते हो तभी वो सत्संग हो जाता है। अगर विषय सत नहीं है, सत यानी भगवान, विषय सत नहीं है तो वो सत्संग कैसे है वो। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। हम लोग कभी भक्तों से लोन लेते हैं, भक्तों से उधार लेते हैं पैसे, या भक्तों से कुछ चीज़ें करवाते हैं पैसे के विषय में, फिर वो समय पर लौटाते हैं। मैंने कितने लोगों को ऐसे देखा है कि फैमिली मेम्बर भी है वो लोग, गुरु भाई भी है ऊपर से, लेकिन एक भाई ने गुरु डिवोटी ने अपने दूसरे भाई को डिवोटी को लोन दिया, दूसरे ने लौटाया नहीं वो। अभी 36 का आंकड़ा है पूरा, 20 साल हो गए उसको, एक दूसरे का मुंह देखते नहीं, और कोई उस पर काउंसलिंग भी कर सकता नहीं क्योंकि इतना इंटीमेट घर का मामला है कि उसमें कोई पढ़ भी सकता नहीं, क्योंकि एक से दुश्मनी बोलनी पड़ेगी आपको, लेनी पड़ेगी। अगर आप बीच में काउंसलर के रूप में घुस गए उसमें तो दोनों में से एक का दुश्मन बनना पड़ेगा, तो कोई जा भी सकता नहीं उसके अंदर, दोनों प्रेम से तो अच्छा है, ऐसे मामले हो जाते हैं। इसलिए पैसे का व्यवहार जितना हो सके उतना भक्तों के बीच में नहीं होना चाहिए। अपरिहार्य हो तो ठीक है, इतना अंडरस्टैंडिंग हो, रिश्ता हो आपका तो ठीक है, लेकिन अधिकतर पैसा बिगाड़ने का काम ज़्यादा करता है अच्छा करने के बदले में। ये वैष्णव एटिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सब लोगों को ये बात बेसिक समझनी चाहिए कि वैष्णव रिश्ते हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप धनी हो लाइफ में तो आपका धन वैष्णव रिश्तों से ही होता है। जितने आप वैष्णवों से प्रेम का संबंध आपका है, जितने अधिक आपका है, जितना गहरा आपका है, उतने आप एक वैष्णव के रूप में रिच हो। नहीं नहीं, भक्तिवेद हॉस्पिटल तो एक संस्था है ना पूजी, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल्स, मैंने आपसे कर्जा लिया, आपने मुझसे कर्जा लिया, और फिर ये यहाँ से ये वो इन्वेस्टमेंट, ये ऐसा वैसा किया और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, वो फेल हो गया, फिर दुश्मनी हो गई, आपने मुझे कन्विंस किया था कि आप डालो इसमें, ये सब चलता है ना। पहले मंदिर में एक बार एक ऐसा बहुत साल पहले एक वो आया था ना, क्या नाम उसका, मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्या नाम था उसका, तो एक कंपनी आई थी बीच में फेमस, एमवे। तो ऐसा एक स्थिति हो गई थी कि भक्त लोग उसमें घुस गए थे पूरा, और उसका फिर एक लेग को बढ़ाना है, एक लेग छोटा है ना उसका, तो एक लेग बढ़ाने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है, सब तो मंदिर में मिलते ही है संडे को, तो हर संडे को पहले संडे फिस्ट के बाद में बैठ कर इनकी मीटिंग हुआ करती थी, बाद में संडे फिस्ट छोड़कर मीटिंग हुआ करती थी। तो मंदिर ने एकदम स्ट्रिक्ट डंडा उठाया उसके ऊपर, बोला इधर कोई भक्त लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, बंद करवा दिया, क्योंकि बहुत सारे भक्त उसमें फाइनेंशियली बर्बाद हो गए एक्चुअली, और उसके वजह से उनके बहुत भक्तों से रिश्ते इतने दुश्मनी जैसे हो गए, लिटरली हजारों रुपये लोगों के ऐसे बेकार चले गए एक भक्त के इंस्पिरेशन की वजह से, उन्होंने डालना शुरू किया टाइम। और फिर क्या है, भक्त लोग मिलते हैं तो कॉन्स्टेंटली एमवे मल्टी लेवल मार्केटिंग यही बातें करते हैं, कुछ सत्संग कृष्ण भगवान तो दूर ही हो गए इसमें से, तो मंदिर को एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ा, मतलब बड़गाई दिया पूरा उसके ऊपर, बंद और बंद हो गया फिर। हाँ, तो ये बहुत, अभी संस्था तो हमारी तो एक पूरी पूरी कंपनी है ना हमारी, वो प्रोफेशनल स्तर पर हम चला रहे हैं उसको, उसमें मेरे कोई लोन नहीं लिया, माधवानंद प्रभु से माधवानंद ने मुझसे लोन नहीं लिया है, दिस इज हाउ, हाँ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर।
ऐसे में क्या करना चाहिए,
देखो अगर आपके पास कोई भक्त आता है, रियल जरूरतमंद है, उसको हकीकत में जरूरत है, सुनो आप मेरी बात पूरी सुन लो, और आपको करुणा आई उसके ऊपर, आपके पास था उसने दे दिया, लेकिन प्रसाद ले लो,
प्रसाद नीचे में,
तो जब आप भक्त को पैसा देते हो तो एक है वसूल करना उससे, वो भी इम्पोर्टेंट है, और आपको लग रहा है कि वो ना तो दे पा रहा है या तो चीट कर रहा है, समझो दोनों में से एक, तो आपको उस समय पे, अभी मैं बता रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट होगा आपको ये सुनने के लिए, आपको फोरगो करने की तैयारी होनी चाहिए, फॉरगेट द मनी, डिवोटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मी, या तो आप पुलिस जा सकते हो, केस कर सकते हो, नोटिस भेज सकते हो, अलग हर तरीके से निकालना है तो कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप किसी भक्त को इस व्यवहार में उतर ही रहे हो तो मन की तैयारी रखो कि मेरा दान हो गया, ये मन में रखो दान हो गया, कागज़ में सब इंस्टॉलमेंट लिख के दो, जितना हो सके उतना करो प्रेम से वसूल, लेकिन कायदे का बड़गा या दंडा मत उठाओ उसके ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि मोर देन माई मनी द डिवोटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मी इन माई रिलेशनशिप, इतनी आपकी तैयारी है तो दे दो लोन आप, मैंने भी दिया है, मैं मेरे को दुख नहीं उस बात का, फॉरगेट इट, इन गुड फेथ इफ यू हैव गिवन बी प्रिपेयर टू लूज इट ऑल्सो, एक भक्त से रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है किसी भी कारण से, उसकी उसके गलत व्यवहार से या उसके रॉन्ग एग्जाम्पल से, कट करना वो हर चीज़ में आसान होता है प्रभु जी, बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिगड़ना तो आसान होता है हमेशा, तो बेस्ट वे नहीं पढ़ना ही अच्छा है, पढ़े तो फिर इस तरह से विरक्त रहो एक टाइम रखिए उसको समाप्त करने का भी
दो प्रश्न और बचे हैं, एक मेरा और एक करण
का, और किसी ने पूछा नहीं उनको प्रश्न पूछना है क्या वैष्णव एटिकेट के बारे में?
हाँ एक प्रश्न केवल वैष्णव एटिकेट पर होना चाहिए, जनरल टॉपिक पर नहीं। मेरा प्रश्न है कि जब हम किसी सत्संग कार्यक्रम में किसी भक्त के घर में जाते हैं तब हमारी क्या उत्तरदायित्व होनी चाहिए?
सेवा, सर्विस एट एनी कॉस्ट, हाउ कैन आई सर्व, इज इनफ आंसर। एग्जाम्पल क्या है? जो सेवा दिखती है वो तुरंत करना शुरू करो, ये मत देखो कि अभी वो करेगा मैं बैठूंगा। इफ एवरीबडी थिंक्स कि आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू सर्व, आई वांट टू, क्या करना है वो होस्ट के कैसा बर्डन मैं कम कर सकता हूँ, एवरीबडी कम्स इन दैट मूड, इट विल सो ईजी, पर आपको बताना पड़ेगा, प्रभु आप मत करो, आप बैठ जाओ, अब हम लोग कर रहे हैं उसको, दिस इज द सिचुएशन वी शुड कम टू एनी प्रोग्राम बेरी को। ऐसे कुछ डिवोटी होते हैं प्रभु जी, वो किसी के घर में कुछ भी प्रोग्राम हो वो खड़े ही रहते हैं सेवा करने के लिए, उसको बोलना ही नहीं पड़ता है। जैसे कुछ लोग मौत होती है तो आ जाते ना वो मजद का काम करने के लिए, वैसे कुछ लोग डिवोटीज कहीं भी हो, अपने काउंसलिंग मीटिंग हो, किसी और की काउंसलिंग मीटिंग हो, किसी और की शादी हो, किसी का एंगेजमेंट हो, किसी का रिटी वेलकम हो, कुछ भी हो, वो आपको उधर ही मिलेंगे, दे विल नेवर, वो होस्ट हो या नहीं हो, किसी घर में प्रोग्राम हो, यू नो ना, ऑलवेज 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 सर्विंग। तो हम सब लोगों को ये मूड एम्बाइब करना है।
कंटिन्यूशन में क्वेश्चन, सेवा डेफिनेटली सबका मूड होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये सेंसिटिव क्वेश्चन है जो मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से पूछना भी चाहता था, स्पेशली जो हाउस होल्डर्स हैं जिनके बच्चे हैं, कई बार क्या होता है किसी डिवोटी के घर में प्रोग्राम है, आई होप नोबडी विल माइंड इट, बट क्योंकि फैक्ट रियलिटी है, तो क्या होता है जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं साथ में, तो जब वो प्रोग्राम वाइंड अप होता है, स्पेशली जिस एरिया में बच्चे होते हैं या और भी बाकी काफ़ी जगह जहाँ बच्चे जाते हैं घर के अंदर, वो ऐसा मेस्ड अप हो जाता है कि जो होस्ट होता है उसके लिए उसको बाद में
बहुत तकलीफ होती है,
बहुत तकलीफ होती है। एज अ पेरेंट्स घर पे बच्चों को सिखाने की मतलब क्या एटिकेट सिखाना चाहिए बच्चों को, जिससे कि ये इस तरह की मेसअप सिचुएशन ना हो?
दो चीज़ें करना चाहिए उनको, या तो बच्चों को घर से ही अच्छी तरह से पढ़ा के आना कि आपको वहाँ पर ये नहीं करना है, उसके बावजूद बच्चे हैं वो हो जाता है उनसे, तो फिर उन पेरेंट्स को उस क्लियर अप में पूरी सहायता करनी चाहिए जिनके बच्चों ने ये सब किया हुआ है, ऐसे निकलने जाना चाहिए क्योंकि हो गया टाइम और बच्चे भी रोज नींद सोने को आ रहे हैं, बच्चे को भी चलना चाहिए ना। अगर आप किसी प्रोग्राम में गए हो तो वैष्णव के अंदर ये एटिकेट होना चाहिए कि मेरी तरफ से ये कष्ट यहाँ पर पैदा हो रहा है मेरे बच्चों की तरफ से, तो मुझे ये क्लियर करके ही जाना है मेरी तरफ से कुछ हुआ है तो। दिस इज अ डिवोटी, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचता है कि मेरे तरफ से कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए इनको, हो रहा है ऑलरेडी तो मैं उसको ठीक करके मुझे जाना चाहिए। तो बच्चों को इम्बॉब करने के लिए आपको घर पे ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको कॉन्स्टेंटली। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बच्चों को लेके जाते हो, बोलना है देखो मैं ले जाऊंगा आपको एक ही कंडीशन पे, आप उनकी चीज़ों को हाथ नहीं लगाओगे, उनका टीवी को ऑन नहीं करोगे, उनका स्विच ऑफ उनका रिमोट लेके प्ले करना चालू नहीं करोगे, उनका बटन ऑन नहीं करोगे, उनके बाथरूम में ये नहीं करोगे, सब कुछ बताना पड़े आपको जो जो वो करता है। अगर मंजूर है तो मैं ले जाऊंगी, नहीं तो घर पे रहो, हम भी नहीं जाएंगे आप भी नहीं जाएंगे। या रेगुलरली विदाउट प्रोग्राम विद प्रोग्राम यू हैव टू कीप ट्रेनिंग देम हाउ टू कीप थिंग्स, कहाँ पर चीज़ रखना है, किसको हाथ लगाना है किसको नहीं हाथ लगाना है, अपने घर पे क्या किसको हाथ लगाना है, बाहर के घर में किसको हाथ नहीं लगाना है, ये सब उसको अच्छी तरह से पट्टी पढ़ा के लाना है आपको। और ये कॉन्स्टेंट एफर्ट है आपका, हर बार आपको करना पड़ेगा, हर प्रोग्राम के पहले करना पड़ेगा। तो बच्चों को फिर वो जैसे कि आप वो हथौड़ी लेके आप बार बार ठोक रहे हो उसके ऊपर, एवरी टाइम गिविंग अ शॉट, तो वैसे आपको उनको रिमाइंड करते रहना है और करना ही है। क्योंकि आप अभी देखो भक्ति बनने भक्ति में आने के बाद में आपका आवागमन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा होता है, बाकी लोग कहाँ जाते हैं, हमारे भाई लोग तो जिंदगी भर के जाते ही नहीं किसके घर पे, ना कोई घर पे आता है उनके, ना कोई यात्रा करते हैं, ना किसी के घर में जाते हैं घूमने के लिए, कभी भी नहीं। तो उनको क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई जाते नहीं ट्रेनिंग की जरूरत उनको है, वो जाते रहते रहते हैं किसके साथ में, पड़ोसी में, इसमें इसमें फंक्शन में सत्संग में जाते रहते हैं। कीप गिविंग ट्रेनिंग, इट्स अ वंडरफुल सोशल ट्रेनिंग, सोशल डेवलपमेंट, नो सोशल ग्रोथ है वो उनका, हाउ टू बिहेव इन पीपल इन कम्युनिटी इन इन द मास ऑफ पीपल इन द समुदाय ऑफ प्रोग्राम्स सत्संग, हाउ टू बिहेव दैट, बात नहीं करने जोर जोर से, बात आवाज़ नहीं करना है सत्संग जब कोई लेक्चर चल रहा है तो, ये सारे कल्चर है आपका, आपको बताना है घर पे, घर में ट्रेन करना है। तो बच्चों को देख के मालूम पड़ेगा आपको, इनको ना ट्रेनिंग दिया है, इनको ट्रेनिंग नहीं दिया है, मालूम पड़ेगा आपको तुरंत देख के, लेकिन देना चाहिए। अगर बच्चों को ये पता नहीं है कि कोई महाराज बैठकर बोल रहे हैं और हमको बात नहीं करनी चाहिए, इतना पता नहीं है तो आगे जाके क्या करेंगे फिर वो, अगर उनको बेसिक पता नहीं है क्योंकि महाराज बैठ के माइक पर बोल रहे हैं और सब बड़े लोग बैठ के ऐसे सुन रहे हैं शांति से, तो मुझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए उस समय, या इशारे से बोलना चाहिए। अगर ये उसको पता नहीं है तो वो क्या आदर करेगा वक्ता का और प्रवचन करने वाले का, तो उसको प्रेरणा देना करना जरूरी है। यस नाउ प्रभु जी डिसाइड होम टू आस्क, नहीं लोगों को पूछना, तो किसी ने पूछा है, प्रभु जी ने पूछा है प्रश्न, उनको आप पूछिए।
कृष्ण प्रभु, ऑफिस में सहायक कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? लाइक कभी ऐसा थॉट आता है डोनेशन अगर मैं कलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने सहायक कर्मचारियों से कभी भी डिस्कस नहीं करता, तो लाइक इन जनरल व्हाट शुड आवर बिहेवियर बी लाइक?
जस्ट बी अ जेन्युइन वैष्णव विद देम, मींस व्हाट, हम्बल, टॉलरेंट, रिस्पेक्टफुल, काइंड, हेल्पफुल, नाइस बिहेवियर, नाइसली टॉकिंग टू देम, बेसिक ह्यूमन एटिकेट। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, एक भक्त होता है ना वो थरो जेंटलमैन होता है। थरो जेंटलमैन मतलब क्या है, एक भक्त होने के बावजूद भी वो जेंटलमैन एस्पेक्ट उसका इंटैक्ट रहता है। वो इंटैक्ट क्या होता है, वो सहयोग करता है हमेशा, झगड़ा नहीं करता है, जितना हो सके उतना टॉलरेट करता है, नम्र रहता है, ऑनेस्ट रहता है। ये जो सारे जो गुण हैं ना एक जेंटलमैन के, वो उसके साथ में हमारे नॉन डिवोटी ऑफिस कलीग से व्यवहार करना चाहिए, एकदम सिंपल। जस्ट बी अ जेन्युइन डिवोटी, आपके व्यवहार से उनको लगना चाहिए कि आप डिवोटी हो, आपको उसको बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं क्या मैं डिवोटी हूँ, देन यू आर नॉट अ डिवोटी बिकॉज दे डोंट रिसीव दैट यू आर अ डिवोटी। आपका व्यवहार उनसे ऐसा होना चाहिए, आपके लिए गाइडलाइन है, ऐसा होना चाहिए कि आपको देख के वो तीसरे को बताना चाहिए, वो आदमी है ना भक्त है, थर्ड पार्टी शुड टेल नॉट यू, इनको बताना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है ना हमारा हॉस्पिटल का जो कर्मचारी है, ऑफिसर है, भक्त आदमी है, दैट मीन्स यू हैव परफेक्टेड योर बिहेवियर विद देम, वेरी सिंपल। और क्या कॉन्ट्रास्ट है बताओ, एक तो एग्जाम्पल बताओ।
जैसे
अपने आप में पर्सनल एग्जाम्पल बताया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं स्ट्रिक्ट है, कुछ नहीं लेना चाहिए आपको पहले अपने।
तो अगर कुछ नहीं लेना चाहिए आपको अच्छा लगता है तो आप रिश्तों को तोड़ने के लिए तैयार रहिए, बिटरनेस के लिए तैयार रहिए। देखो आप कैसा ना, एक एक चीज़ है, आई विल डू कम व्हाट मे व्हाट हैपेंस, आई डोंट केयर, मैं जो यही करना है यही करते जाऊँगा, जो कीमत चुकानी पड़ेगी मैं तैयार हूँ उसके लिए, इसका रिश्ता बंद छोड़ना पड़ेगा, ये मुझे बात करना बंद करेंगे, ये मुझसे नाराज हो जाएंगे, आई डोंट केयर, आई विल जस्ट कीप गोइंग अहेड। वो भी बुरा नहीं है, इट्स वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और दूसरा वे ऑफ थिंग ऐसा है कि नो आई वुड लाइक टू जस्ट गो इन अ वेरी नाइस उदार हृदय तरीके से मैं चलना चाहूँगा, मैं इन सब से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इनको सब में साथ लेते रहते ही मैं जाऊँगा, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा लेकिन फिर मैं करते करते जाऊँगा। या तो इन लॉज के घर में गणपति को जाओ मत, उनको परमानेंट नाराज करके रखो, या तो 30 साल हो गए हर साल जा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं उनके आमंत्रण का और जा रहे हैं, एक दिन पूरा बिगड़ रहे प्रभु जी। एक पब्लिक हॉलीडे हमारे लिए कितनी कीमती होती है आपको पता नहीं है, एक पूरी पब्लिक हॉलीडे हमारी केवल सोशलाइज में जाती है, उसमें कुछ नहीं होता है, जाते हैं बैठते हैं खाते हैं और चले जाते हैं, नथिंग एल्स, निद्रा भी नहीं मिलती बीच में, आराम भी नहीं मिलता है, जस्ट होल डे गोज इन दैट, वी आर टायर्ड इन द इवनिंग, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हम लोग ऐसा नहीं कि छुट्टी थी कि फ्रेश काम पर चले गए, थके चले जाते हैं। लेकिन 30 साल से ये एटिकेट फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इन लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हर पेरेंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई मे नॉट लाइक इन माई हार्ट, शी नोज कि आई मे नॉट लाइक इन माई हार्ट टू गो एंड वेस्ट माई होल डे देयर, बट स्टिल शी सीज दैट एवरी ईयर आई एम कमिंग देयर एवरी ईयर, ओनली वन ईयर आई अब्रॉड, दैट टाइम आई डिडंट गो। सो ये एक तरीका है, अभी आपको तय करना है कि कौन सा तरीका आपको पसंद है, आपकी पर्सनैलिटी एकदम न्यूक्लियर है या ब्रॉड माइंडेड सोशल है, या आपको तय करना है क्या, व्हाट यू वांट टू डू।
सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं अपने आप को,
बिल्कुल,
उसमें अपराध तो नहीं है ना कि हमने आपकी बात मानी और उनकी नहीं मानी।
हर समय चॉइस आपका रहता है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। आप, मैंने 2 घंटा आपके साथ बिताया, इसमें से एक भी चीज फॉलो नहीं करनी है, ये भी आपका ही निर्णय होगा, फ्री विल, भगवान भी इंटरफेयर नहीं करता, हम लोग क्या इंटरफेयर कर सकते। हाँ बोलो,
लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग
हम भक्ति विषय ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ पे मेंटर स्ट्रिक्टली कहते हैं कि जो नॉन डिवोटीज के हाथ का कुक किया हुआ कुछ नहीं खाना, और वो कहते हैं कि तुम्हारे जो क्लोज रिलेटिव की शादी है तो तुम अपने घर से खाना बना के लेके जाओ, वहाँ बैठ के खाओ। तो अब और जो वो भक्ति भिक्षा में मेरी फ्रेंड्स जिनको मतलब हम साथ में जाते हैं तो वो मुझसे पूछती है कि भाई क्या तुम ऐसा करती हो, तो अब मैं उनको क्या गाइडलाइन क्या बोलूँ।
मेरा आने का पर्पज यहाँ का आपके मन में टर्बुलेंस पैदा करने का नहीं है, आई हैव नॉट कम टू एजिटेट यू हियर विद माय स्टेटमेंट्स, लेकिन आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल इट इज, आप शादी में जा रहे हो और घर में खाना डिब्बा लेके जा रहे हो वहाँ पर, जस्ट कांट इमेजिन दिस सिचुएशन। मे बी इसी के लिए हम लोग हरे कृष्णा वाले लोग हैं ना, बहुत आइसोलेटेड होते जा रहे हैं डे बाई डे, आई थिंक समाज से क्या कहते हैं अस्वीकृत रूप में जा रहे हैं हम लोग, पीपल आर, समाज इज नॉट एक्सेप्टिंग अस एज वी आर, यू नो, जस्ट बिकॉज वी आर टू रिजिड एंड टू ऑर्थोडॉक्स एंड टू एरोगेंट अबाउट आवर ओन थिंग्स, यू नो, कि हम लोग नहीं करते ऐसे वैसे, आई डोंट नो, आई हैव राइट टू हैव माई ओन ओपिनियन, यस।